Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare.
तो सबसे पहले मैं भक्तों को प्रणाम करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जाय। श्रील प्रभुपाद की जाय। एक 5 मिनट हम एक भजन लेंगे और उसके बाद हम आज का क्लास शुरू करेंगे। सो हम जयानी लो प्रेमधना एक 5 मिनट गाएंगे और उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनाता, कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन, कहा दशरघो नाथ पतित पावन, कहा दशरघो नाथ पतित पावन, कहा मोरा भट जुगा कहा कबीरा, कहा मोरा भट जुगा कहा कबीरा, एक काले को था गेला गोर नटारा, एक काले को था गेला गोर नटरा, पसाने कूटिबो माथा आनाले पासिबो, पसाने कूटिबो माथा आनाले पासिबो, गौरंगेर गुणेर निधि কোথা গেলে পাব, গৌরঙ্গের গুণের নিধি কোথা গেলে পাব, সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলা, সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে से सब संगीरा संगे जे कैलो विला, से संग ना पाया कांदे नरोता मदा, से संग ना पाया कांदे नरोता मदा, जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा बलदेवा जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान या गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. I request all of them who are in this Zoom audience, please join your hands and we will pray to His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj by reciting his pranam mantra and then we'll begin the class today. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Charu Swamin Iti Namine Snigdha Cheta Supraneta Vagmi Nam Chara Saplutam Prabhupada Gata Pranam Naomi Bhakti Charu Padam His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj Ki Jai हम सब लोग अवगत है ये दुखद समाचार हमें कल शाम को मिला कि परम पूज्य भक्तिचारु स्वामी महाराज अब हमारे बीच में नहीं रहे वे शरीर छोड़ चुके हैं और वे श्रील प्रभुपाद के साथ पुनः गोलोक वृंदावन में कृष्ण की नित्य सेवा में जुड़ गए हैं अवश्य जो वैष्णव आचार्य होते हैं उनका आना या जाना दोनों ही दिव्य होता है और जैसे कि कहा गया है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई वैष्णव अब यहाँ नहीं रहे क्योंकि वैष्णव अपनी वाणी से अपने दिव्य संदेशों से हमेशा हमारे साथ रहते हैं और भक्तिचारु स्वामी महाराज का आशीर्वाद उनकी कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहेगी वो हमारे साथ है और जब तक कि हम उनकी लिगसी उनके विरासत उनकी भावनाएं उनकी जो प्रीचिंग स्पिरिट थी जब तक कि हम उसको अपने हृदय में रख के चलते हैं तब तक वे हमारे साथ ही है उनका आशीर्वाद हमारे साथ ही है और हमें ये भी समझना चाहिए कि हम उन्हें शायद फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वे और भी कोई इम्पोर्टेंट सेवा के लिए गए हुए हैं जैसे कि कल ये समाचार सुनने के बाद बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल जूम कॉन्फ्रेंस में भक्तिचारु स्वामी महाराज के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे थे तो सबका यही मानना था कि महाराज प्रभुपाद जी के बुलाने पे गए हैं क्योंकि नहीं तो सडनली ऐसा उन्हें सुझा और वो अमेरिका पहुँचे वे हेल्दी फिट एंड फाइन थे उन्हें कोई शारीरिक समस्या नहीं थी और बहुत शिष्यों ने उन्हें जाने के लिए मना भी किया था लेकिन अगर आप देखो तो उनके लास्ट वीडियो में वो कहते हैं कि मुझे बहुत लोग मना कर रहे हैं कि मैं अमेरिका नहीं जाऊँ लेकिन मैं जाऊँगा क्योंकि मैं एक लीडर हूँ जब मेरे शिष्य अन्य भक्त फ्रंट लाइन में माया के विरुद्ध अमेरिका जैसे प्रदेश में महाराज जी ने खुद कहा मेरे वचन नहीं है, वे कह रहे थे कि अमेरिका इज ए हेल, तो ऐसी ऐसी जगह में कोई क्यों जाना चाहेगा। तो मेरे शिष्य जब अनुयायी जब भक्त लोग फ्रंट सोल्जर जैसे वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ उज्जैन में कैसे बैठ सकता हूँ, मुझे भी जाना है, उनके साथ खड़ा रहना है, उनके साथ उनकी मदद करनी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और वे कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा था कि आप वृंदावन या मायापुर में बैठे रहो, उन्होंने कहा था कि जाके प्रचार करो, तो मुझे भी प्रचार करना है। तो हम समझ सकते हैं कि ही डिडंट वांट टू यू नो डाई सिटिंग समवेयर, ही वांटेड टू डाई इन द बैटल फील्ड। जैसे कहा जाता है ना कि जो सैनिक होते हैं, अगर आप कहो कि घर में बैठ के अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे इतना महान नहीं माना जाता, लेकिन जब लड़ाई के क्षेत्र में लड़ाई करते करते जब उनकी मृत्यु होती है तब उन्हें परमवीर चक्र या कुछ दिया जाता है। तो उसी तरह से भक्तचरण महाराज के ये विचार थे कि नहीं, मैं फ्रंट लाइन सोल्जर हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा अमेरिका में और मैं वहाँ जो है प्रचार के लिए मदद करूँगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 महीने से उज्जैन में हूँ और मुझे वहाँ जाना है और ये करना है। बट ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि उज्जैन में भी कोई वो रिट्रीट में नहीं थे या कोई आराम नहीं कर रहे थे। ऐसे साधु पुरुष तो जहाँ जाते हैं वे दूसरों को माया के साथ युद्ध में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और महाराज तो एक ऐसे सोल्जर थे जिनका युद्ध क्षेत्र में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल उनके रहने मात्र से ही दूसरों को एंकरेजमेंट मिलती है। सी देर आर सम सोल्जर्स हु डोंट एक्चुअली हैव टू गो टू द बैटल फील्ड, इवन बाय देयर प्रेजेंस दे कैन एंकरेज एंड गिव अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म फॉर अदर्स टू फाइट। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट वॉज रियली नाइस ऑफ महाराज टू गो देयर एंड ट्राई टू यू नो help out other devotees and preach in America, but at the same time we all understand that even if he was simply present in this world, unhe kuch karne ki zarurat nahi thi, that itself would have encouraged hundreds and thousands of devotees to continue their Krishna consciousness or progress in their Krishna consciousness. Now we feel a big vacuum, bhakton ko bahut bada vacuum lagta hai, unke prem, unki atmiyata, unki बातें, उनके वचन, और वे इतने मिठास से भरे हुए थे। उनके साथ जिनका भी संबंध अगर जुड़ा है या कभी उनके संपर्क में आए हैं तो वे बता सकते हैं कि वे पूरे मिठास से भरे हुए थे। जिस तरह से हम कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे कृष्ण मिठास से भरे हुए थे और उसके अलावा कृष्ण में और कुछ नहीं है, उसी तरह से हिज होलीनेस भक्तिचारु स्वामी महाराज भी केवल मिठास से ही भरे हुए थे, उसके अलावा और कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं था उनमें। विच किसी से भी मिलते, अगर आप कोई भी फोटो उनका देख लो आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कहीं भी आप गूगल में एक बार भक्तिचारु स्वामी महाराज और आप गूगल में डाल के देखिए, आप हर फोटो में देखेंगे उनका जो राइट हैंड होता है ना, वो किसी ने किसी को शाबाशी दे रहे हैं या किसी का हाथ पकड़ रहे हैं या किसी को प्यार से शोल्डर पे हाथ घुमा रहे हैं। इतना प्यार था उनमें, जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर संतरे को निचोड़ोगे तो सिर्फ संतरे का जूस आएगा, आप अगर मौसम्बी को निचोड़ोगे, कितना भी निचोड़ो तो उसमें सिर्फ मौसम्बी का जूस ही निकलेगा और कुछ नहीं आएगा। बस महाराज भी कुछ ऐसे ही थे। आप किसी भी तरह से उनके संपर्क में आओ, मैनेजमेंट के इश्यूज़ में या आप प्रचार की बातों से या ऐसे ही कोई क्लास में आपने क्वेश्चन पूछ लिया या कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, या बिल्कुल आपको जानते भी ना हो शायद और आपने कहीं उनको प्रणाम कर लिया, कुछ पूछ लिया, वे सबको प्यार देते थे। उनको प्यार के सिवा और कुछ देना नहीं आता था, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीबडी। लास्ट 2018 में जब मैं पुणे आई थी जीबीसी कॉलेज के काम से, तो तभी मैं उनसे लास्ट मिली और शायद मुझे तब पता भी नहीं था कि ये महाराज के साथ में आखिरी मुलाकात होगी। और वो कुछ क्षण जो उनके साथ में स्पेंड किए थे वे बहुत ही खूबसूरत थे। उनकी वो इन्फेक्शियस स्माइल तो कभी नहीं भूल सकते। आप उनके कोई भी फ़ोटो में देख लो, मुझे नहीं लगता कि बिना स्माइल के उनका कोई भी फ़ोटो होगा। अगर आप गूगल में, हमेशा वो मीठी सी स्माइल देते थे और उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए थे हमें। जीबीसी कॉलेज में, और ऑफकोर्स वो हमारे टीचर भी थे जीबीसी कॉलेज में. उन्होंने वैष्णव सदाचार पे हमें कोर्स दिया था और हमने उनके साथ बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे. और वो लास्ट मुलाकात में महाराज सबको एक किताब गिफ्ट दी थी जिसमें लीडरशिप पे श्रील प्रभुपाद जी का क्या कहना है, श्रील प्रभुपाद जी के डिफरेंट कोट्स, एक लीडर को कैसे होना चाहिए, उसको संग्रह करके एक किताब बनाई थी. वो किताब हम सब लीडर्स को वो अपने हाथों से दे रहे थे और बहुत सारी अच्छी बातें वो बता रहे थे कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए, बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, कैसे होना चाहिए. ऑफकोर्स उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वह केवल अपने बिहेवियर से ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं. जैसे बोला जाता है ना कि कुछ लोगों के पास से प्रवचन सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल उनको देखने से, वे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार से ही वो हज़ारों बातें हमें सिखा देते हैं. महाराज जी का भी कुछ ऐसा ही था, बस उनके बिहेवियर से, अगर आप सिर्फ उनको देखो वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसमें आप हज़ार बात सीख लो. और ऑफकोर्स हम सब जानते हैं उनका, वो किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से भजन करते थे. और सबसे सुंदर लगता था जब वो गोपी गीत गाते थे, स्पेशली वो वर्स तव कथामृतम, वो अक्सर अपने क्लास में ये वर्स बोला करते थे. तो उनकी वाणी भी मीठी थी, उनके भजन भी मीठे थे, उनका व्यवहार भी मीठा था. बहुत ही प्यारे, मुझे ये बोलने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद इस्कॉन के सारे लीडर्स में से ये कुछ ज़्यादा ही प्यारे लगते थे. और दूसरे लीडर्स भी ये बात बोलने में संकोच नहीं करते थे, सबसे ज़्यादा मीठा व्यवहार था उनका. और प्रभुपाद जी के भी वो काफ़ी प्रिय थे. हम जानते हैं कि बहुत ही कम समय में वो इस्कॉन के संपर्क में बहुत लेट से आए थे. 1976 में आए थे और 77 में तो प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी भी बन गए. प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा, संन्यास दीक्षा और लास्ट मोमेंट में वो प्रभुपाद जी के साथ थे. वो लास्ट मोमेंट में जब प्रभुपाद जी की समाधि दे रहे थे तब वे उधर थे, प्रभुपाद जी के शरीर को पकड़े हुए, तमिल कृष्ण महाराज के काफ़ी करीब थे. और उनका मीठा स्वभाव प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगता था, प्रभुपाद जी उन्हें मिस करते थे. इनफैक्ट आज का हमारा जो क्लास है, प्रवचन नहीं दूंगी मैं, सिर्फ आज ये जो किताब है ओशन ऑफ मर्सी कृपा सिंधु, जहाँ पे भक्तिचारू महाराज ने अपने पूरे जीवन के सफ़र को बहुत ही संक्षेप में बताया, बस हम एक बाय एक उसमें से जितना हम सुन पाए या पढ़ पाए हम कोशिश करेंगे. 6 बजे तक चलेगा क्लास, जितना भी कवर कर सकते हैं करेंगे. और एक सफ़र पे हम निकल पड़ेंगे महाराज जी के साथ, ये 2 घंटे का सफ़र, जहाँ पे उनका बचपन, उनके पढ़ाई, वो कैसे प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, कैसे उनका संन्यास हुआ, और ये सारे मोड़ जो उनके जीवन में आए, उनकी फीलिंग्स, उनके आंतरिक भाव, उनका प्रभुपाद जी के साथ का संबंध, ये सारी बातें हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और उस मेडिटेशन में रहेंगे. और महाराज जी से हम ब्लेसिंग भी मांगेंगे कि हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने दिव्य संदेशों के द्वारा हमेशा हमारे साथ रहे, हमारा मार्ग निर्देशन करे और उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे. तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगी इस किताब से. अगर आपके पास भी घर में ये किताब है, ओशन ऑफ मर्सी कृपा सिंधु, वी आर सो फॉर्चुनेट कि महाराज ने ये किताब लिखी. हालांकि बहुत बार महाराज प्रभुपाद कथा बोलते हैं और इनफैक्ट वो प्रभुपाद कथा बोलने के लिए काफ़ी फेमस है. वह जहाँ जाते हैं सब उनको बोलते हैं महाराज अब प्रभुपाद जी की कथा बोलो. और समहाउ सब भक्तों की प्रेरणा से उन्होंने ये किताब लिखी, जो अब लगता है कि सच ए बिग ट्रेजर. ये नहीं होता तो ये इनकी वाणी, ये इनके सारे इंसिडेंट्स कहाँ गुम हो जाते. तो बहुत सुंदर किताब है, अगर आपके पास घर में एक कॉपी है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और एक एक पेज पर मैं जैसे जाऊंगी आप भी मेरे साथ इस सफर में जुड़ सकते हैं। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की जाए। तो ये किताब शुरू होती है इस तरह से, यहाँ पे महाराज 1945 से अपने सफर के बारे में बताते हैं। इनका जन्म 1945 में वेस्ट बंगाल में एक पवित्र परिवार में, हिंदू पवित्र बंगाली परिवार में हुआ था। और महाराज जी की माता जो है बहुत ही स्पिरिचुअल रिलीजियस माइंडेड थी, हालांकि बहुत सारी देवी देवताओं की भी पूजा करती थी, लेकिन वो विशेषतर महाराज को बहुत बार बताती थी कि तुम राम जी का कृष्ण का शेल्टर लो, उनके छाया में रहो, उन पे पूर्ण विश्वास रखो। और महाराज जी के जो पिताजी थे वे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, तो महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि हमारे पिता ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि वे शूटिंग में जाते रहते थे अक्सर। और महाराज अपनी चाइल्डहुड मेमोरी इसमें शुरुआत में बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने माताजी के साथ में छत पे बैठ के रात को तारे देखने में बहुत आनंद आता था। और वे अपनी माता से बहुत सारी फैसिनेटिंग कथाएं सुनते रहते थे उसके बारे में। और फिर ऐसा होता है कि जब महाराज काफ़ी छोटी उम्र के थे, 7 साल के थे, तब उनकी माताजी को क्षय रोग हो गया था। और हम सब जानते हैं ये क्षय रोग जो है वे काफ़ी संक्रामक है, तो उन दिनों में तो कोई क्यूर नहीं था, तो क्योंकि ये कंटेजियस है ट्यूबरक्लोसिस, तो महाराज की जो बड़े भाई थे, उनकी जो छोटी बहन थी, वो सबको माता से दूर कर दिया गया क्योंकि उनको वो रोग ना हो जाए। तो महाराज को अपने पिताजी के बहन के घर में भेज दिया गया, उनके बड़े भाई को कहीं और भेज दिया, कोई और आंटी के पास में, उनकी बहन को कोई और आंटी के पास भेज दिया गया। महाराज तब बहुत छोटे थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि हमें हमारी माँ से दूर क्यों किया जा रहा है। और फिर थोड़े दिन के बाद में उन्हें ये खबर मिली कि उनकी माताजी जो है गुजर गई, उनका देहांत हो गया है। तभी भी उनको समझ में नहीं आया जब उनके अंकल उनको लेने आए और वे कमरे के अंदर गए। और आपको पता है जब मृत्यु होती है तो जो स्त्री होती है पतिव्रता नारी, उसको सजाया जाता है। तो महाराज अपनी किताब में बताते कि मुझे लगा कि क्या बात है, आज मेरी माँ को इतने सुंदर से सजाया है, सिंदूर लगाया है, बहुत सुंदर कपड़े पहनाए हुए हैं, वो लेटी हुई है, ये सब रो क्यों रहे हैं, घर में क्या हो रहा है। फिर उन्हें समझ में आता है कि अच्छा, मेरी माँ का देहांत हो गया और अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगा। तो उसके बाद में महाराज काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि ऐसे भी पिता का समय नहीं मिलता था, तो माता का ही प्यार मिलता था और वो भी अब नहीं रही। तो उसका अफेक्ट उनके पढ़ाई में जाता है और वे स्टडीज़ में थोड़ा सा डल हो जाते हैं और एनुअल एग्ज़ाम में वो फेल हो जाते हैं, तो उनको प्रमोट नहीं किया जाता है दूसरी क्लास में। अब वो इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई नॉर्थ इंडिया में एक अच्छे से हॉस्टल में पहाड़ों के बीच में कहीं मेरी पढ़ाई करूं, लेकिन क्योंकि माता का देहांत हो गया था तो पिता भी अब जो है उनके जो शूटिंग वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद में अब इतनी बड़ी अच्छी हॉस्टल में डालने के लिए उनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं थे, तो महाराज को कोई लोकल स्कूल में डाल दिया। और लेकिन महाराज की बहुत इच्छा थी कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए, तो अक्सर प्राइवेट स्कूल में जाने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म देखते और बोलते कितना सुंदर यूनिफॉर्म है, काश मैं ऐसा पहन सकता। और जब वे फेल हो गए तो वो इतने डिप्रेस हो गए, तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने आप से चला जाता हूँ नॉर्थ इंडिया में कोई पहाड़े वाले हॉस्टल में और वहाँ जाके, बच्चे थे छोटे थे, तो मैं जो है प्रिंसिपल को कन्विंस करूंगा और मैं कैसे भी करके रह जाऊंगा। तो घर में गए, यहाँ वहाँ से जो भी उनको उनकी पिगी बैंक में जो पैसा था, कोई शेल्फ से यहाँ वहाँ पैसा लिया और ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन में बैठ गए तो वहाँ पे टीसी ने उनको पकड़ लिया, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? तो महाराज ने झूठ बोल दिया, नहीं मैं कहीं नहीं, जब मैं तो हॉस्टल जा रहा हूँ, छुट्टियों के लिए घर आया था। टीसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ में कोई बड़ा क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला, नहीं वो मेरे माता का देहांत हो गया, पिताजी जो है बिजी है, तो मैं अपने आप से जा रहा हूँ। और ऐसा बोल गया, टीसी ने मान लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज छोटे थे ना, उनको नींद आ गई, वे सो गए। और जब उनकी आँख खुली तब उन्होंने क्या देखा कि ट्रेन रुकी हुई है और आस पास में सारे पुलिस ऑफिसर और बहुत सारे लोग खड़े हैं और महाराज की ओर घूर रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग को जो है पता चल गया है, और फिर जो है उन्हें पकड़ के स्टेशन मास्टर को दे देते हैं और फिर वहाँ से अपने पिताजी को वो फ़ोन करते हैं और फिर पिताजी आके उनको ले जाते हैं। तब उसके बाद में इनको पता चला कि अब जो है महाराज को रोकना मुश्किल है, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर वे फाइनली उनको त्रिपुरा में खोवाई नाम के एक जगह जो बांग्लादेश से करीबन 500 किलोमीटर दूर में बॉर्डर में है, तो वहाँ पे उनको जो है एक स्कूल में डाल देते हैं। और वहाँ पे जो एक अंकल थे जिनके घर में ये रह रहे थे, वे एक अच्छे संपन्न लॉयर थे और उनके भी तीन बच्चे थे जो काफ़ी छोटे छोटे थे, और वे महाराज को खूब प्यार दिए, बहुत प्रेम दिए। तो महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके प्रेम से जो है मैं इतना खुश हो गया, मैं इतना संतुष्ट हो गया, मैं धीरे धीरे पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और मेरी पढ़ाई आगे चलती रही और स्कूलिंग पूरी उन्होंने जो वहाँ पे कंप्लीट की। वे बहुत अच्छा सॉसर खेलते थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उनके बाद उन्होंने सोचा कि मैंने त्रिपुरा में पढ़ाई तो कर ली है स्कूल की, अब मैं कॉलेज के लिए कहीं और जाना चाहता हूँ। तो फिर महाराज जो है दार्जिलिंग में किसी कॉलेज में भर्ती हुए। शुरू से ही महाराज का इंग्लिश बहुत अच्छा था, और हालांकि बंगाल में उन दिनों में सब धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, लेकिन महाराज के जो पिता थे क्योंकि वे फिल्मी बैकग्राउंड से थे तो वे सूट कोट पहनते थे और महाराज बहुत आकर्षित थे। तो वे लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं भी सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं सूट कोट पहनूंगा, मैं वेस्ट में जाऊँगा और वेस्ट इज़ बेस्ट, और ये जो एटीट्यूड उन दिनों में कई लोगों का था, और मैं सोचता था मैं अच्छा इंग्लिश बोलूँगा। और महाराज अपने एक टीचर नीरज बाबू से काफ़ी इम्प्रेस थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत टॉर्चर किए गए थे, और जब वे जेल में थे तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें इतना मारा था कि एक वेन उनकी टूट गई थी जिससे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है, तो कभी कभी वो टीचर जो है अपना सिर पकड़ के बैठ जाते थे पेन से, लेकिन जब भी उनको पेन नहीं होता था वे बहुत सुंदर से पढ़ाते थे। हालांकि वो ब्रिटिशर्स को हेट करते थे लेकिन उनकी लैंग्वेज को वो बहुत पसंद करते थे। तो जो टीचर है नीरज बाबू, उन्होंने महाराज को काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि तुम्हें अच्छा इंग्लिश बोलना है तो तुम्हें इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में सपना देखना है, इंग्लिश में सोना है, इंग्लिश से ही चलना है, मतलब ऐसे उनको काफ़ी इम्प्रेस कर दिया था। और महाराज काफ़ी इंग्लिश किताबें पढ़ते थे, होमर, टॉलस्टॉय, दुमास, ऐसे अलग अलग ऑथर्स की। उसके बाद दार्जिलिंग में उन्होंने 2 साल केमिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद में उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली पायलट ट्रेनिंग के लिए, तो वे कलकत्ता गए, वहाँ पे उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली। तो उन्हें कहा गया था कि अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली तो शायद वो इंडियन एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट हो जाए, लेकिन महाराज बताते हैं कि वे इंडियन एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। और कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने के लिए उनके पास में उन दिनों में इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अब मैं कोई बिजनेस करता हूँ। तो उनके एक मित्र थे आलोक गुप्ता, जिनके साथ में उन्होंने इंस्टेंट कॉफ़ी का बिजनेस किया, तो कुछ पैसे कमाए। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी कि वे विदेश जाए, खास करके वे अमेरिका लंदन नहीं, वे जर्मनी जाना चाह रहे थे। बहुत सारे उनके मित्र लंदन जाते थे उन दिनों में, लेकिन महाराज की इच्छा थी कि वे जर्मनी जाए, क्योंकि उन्हें बचपन की कुछ यादें थी जर्मनी के साथ। जैसे बर्लिन में उनके एक अंकल थे विद्यापति घोष, जिन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की थी, वो वहाँ पर रहते थे, और फिर वहाँ वहीं की लड़की, एक जर्मन लड़की से शादी किए थे, उनका नाम डॉली था, और उनको लेके वे फिर भारत आए थे। तो महाराज को उनका नेचर भी काफ़ी पसंद था, वे उन्हें डॉली काकी माँ कहते थे, तो बंगाली में काका काकी माने चाचा चाची, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो उन्हें बहुत सुंदर मेमोरी थी डॉली काकी माँ की, तो वे हमेशा सोचते थे नहीं मैं भी जर्मनी जाऊँगा, स्पेशली वे हैमबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते थे। उन दिनों में महाराज को पता चला कि उनका एक दोस्त जिनका नाम था प्रसून, वो जर्मनी जा रहा है सोशल साइकोलॉजी पर स्टडी करने के लिए। तो महाराज ने बोला मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी वहीं पढ़ाई करनी है। 1970 में महाराज निकल पड़े। अब महाराज काफ़ी पुस्तकों से इंस्पायर्ड होके, उनकी इच्छा थी कि मैं बस सीधा जर्मनी नहीं, मैं हिच हैकिंग करता हुआ पहुंचूंगा, माने रोड में, ऑन रोड, माने इस कंट्री से होते हुए, उस कंट्री से होते हुए रोड में जाऊंगा। क्योंकि उन्हें उन्होंने एक किताब पढ़ी थी ऑन द रोड, उनसे वे काफ़ी प्रोत्साहित थे और वे सोच रहे थे कि अगर जीवन में सच में सीखना है तो किताबों से नहीं सीख सकते हम, जब एक्चुअली लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं, अलग अलग देशों को देखूं। तो उनके दोस्त जो है प्रसन्न के साथ, वे दोनों निकल पड़े, वीज़ा वगैरह करवाया, और वहाँ से महाराज ने अपनी एक यात्रा शुरू की, इराक से होते हुए टर्की, ग्रीस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, अलग अलग देशों से वे गुजरते रहे, हिच हैकिंग करते हुए, माने रास्ता में कभी किसी से लिफ्ट ले लिया, कभी बस राइड ले ली, तो कभी गाड़ी, कभी कुछ, ऐसे करते करते वे अलग अलग जगह, और बस कुछ कुछ पेजेस में महाराज इसी के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, कैसे भी अलग अलग लोगों से मिले, कभी कहीं कोई गुरुद्वारा में उन्होंने रात गुजारी, तो कभी किसी के घर में, तो कभी बस ऐसे ही जंगल में या किसी पहाड़ में, बस ऐसे ही नेचर में बस लेट जाते और तारे देखते हुए कभी कोई रात बिता दी। तो ऐसे करते करते वे अलग अलग लोगों से मिले, वहाँ पे मार्क नाम का एक इंग्लिश लड़के से भी पहचान हुई, और उसके बाद अहमद नाम के कोई मुस्लिम लड़के से दोस्ती हुई, और ऐसे करते करते महाराज अलग अलग देशों में, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ दिनों तक खाने के लिए मुश्किल हो गया, जैसे वो टर्की गए थे तो वहाँ पे किसी गांव में उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो एक महिला ने दरवाज़ा खोला और महाराज का मुंह देख के सीधा दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर दिया, और वो चिल्लाई जोर से। महाराज भी काफ़ी डर गए कि कहीं ये लोग मुझे कोई, यू नो, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने सिर्फ कुछ खाना है, बस कुछ प्रसाद के लिए जो है मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन शायद ये महिला डर गई क्योंकि वो बहुत ही सुनसान जगह थी। और फिर महाराज भी डर के मारे जो है अपने दोस्त मार्क के पास वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि कुछ गांव के बच्चे उनके लिए खाना लेके आते हैं, कुछ ब्रेड कुछ बटर। तब उन्हें समझ में आता है कि टर्की के लोग काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। वो लेडी उनको देख के डर गई थी, लेकिन उसने फिर वो गांव के कुछ बच्चों को भेजा कि लगता है कि ये कोई भारत से आया हुआ है, कोई यात्री है, वो भूखा है, उसके लिए प्रसाद ले जाओ, उसके लिए खाना ले जाओ। तो उस तरह से महाराज बहुत सुंदर सुंदर अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कैसे वे अलग अलग लोगों से मिले और अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें उन्होंने सीखी, और इस्तांबुल और ग्रीस और ऐसे अलग अलग जगह। ऑल्सो महाराज बताते कि कैसे पूरे विश्व भर में वो जहाँ जहाँ भी जो जो देश में जाते थे वहाँ पे वो भारतीय है, इसलिए उन्हें विशेष मान मिलता था। और ऑफकोर्स उनका स्वभाव भी इतना प्यारा था कि वे जहाँ जाते सब लोग उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते और उनके साथ काफ़ी अटैच हो जाते थे। तो फाइनली ऐसे करते करते महाराज जो है जर्मनी पहुंच गए, और वहाँ पे जो उनके कज़न्स थे उनके घर में रहने लगे, बबीदा और उनके जो एक आंटी थी मीरा दी, मीरा और बबी, बाबी और मीरा, मतलब उनके जो कज़न्स थे उन्होंने जो है महाराज की मदद की, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग में महाराज का एडमिशन करा दिया। वहाँ महाराज ने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई सब ठीक चल रहा था, और महाराज ने वहाँ पे बिल नाम के एक युवक से दोस्ती की। यहाँ से महाराज के जीवन में बदलाव शुरू हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे वे लोग, प्राय कोई युवक नव युवक थे, तो कभी कोई डिस्को में चले गए, कभी कोई पार्टी। तो एक दिन ऐसा हो गया कि एक संडे के दिन वे सब बैठे हुए थे, और चक नाम का जो एक युवक है उन्हें महाराज को पूछा कि मैंने सुना आपके भारत में भूखे लोग भूख से मर जाते हैं, क्या ये सच है, कितने लोग भूख से मर जाते हैं? तो महाराज ने इमीडिएटली बोला कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भारत बहुत संपन्न है। और उस युवक चक ने बहुत मजाक उड़ाया महाराज का नहीं, मतलब कि तुम क्यों छुपा रहे हो, पूरा दुनिया जानती है कि भारत के लोग जो है गरीब है और भूखमारी से लोग मर जाते हैं। तो फिर महाराज ने उसके साथ में बहुत आर्ग्यू किया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत में गरीब देश है, भारत तो सोने की चिड़िया है, भारत में तो लोग आते हैं पैसा लूटने के लिए, बस इट्स जस्ट दैट भारत में लोग आध्यात्मिक जीवन शैली पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो भौतिक वस्तुओं की संग्रह के लिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, बस इसीलिए शायद थोड़ा सा प्रोग्रेस रुका हुआ है। लेकिन उस दिन जब वो आर्ग्यूमेंट चल रही थी, कुछ दोस्तों ने इंटरवीन करके दोनों को बोला चलो बंद करो, चुप करो, ये आर्ग्यूमेंट हम जो खा रहे थे, चलो खाना कंप्लीट करते हैं। लेकिन महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इसके साथ में विवाद ठीक से आर्ग्यू भी नहीं कर पाया हूँ, मुझे और भी जानना चाहिए, मैं जहाँ से आया हूँ लोग मेरे देश के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो वहाँ से महाराज की जो एक सीरियसनेस शुरू हो गई, उन्होंने इंडिया चिट्ठी लिखी अपने एक दोस्त को और कहा कि मुझे किताबें चाहिए जो हमारे भारत देश के बारे में बताए, जैसे कि उन्होंने पहली किताब पढ़ी अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया, हालांकि वो एक विदेशी जर्नलिस्ट के द्वारा लिखी हुई थी लेकिन उसमें काफ़ी भारत के कल्चर के बारे में डिटेल्स थी। तो महाराज उसको पढ़ने लगे, उसके बाद में रमन महर्षि की किताब, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, रामकृष्ण मिशन की किताबें, और बस वो पढ़ने लगे कंटिन्यूसली। और जब वे बहुत सारी किताब ऐसे पढ़ने लगे वो धीरे धीरे और डीप जाने लगे। एक दिन उन्होंने सडनली डिसाइड किया बस मुझे इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया से आया क्यों? मेरा भारत इतना महान है, इतना समृद्ध है, आध्यात्मिक स्तर में इतना ऊंचा जा चुका है, मैं इधर क्यों आया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तब उनके सारे दोस्तों ने कह रहे, तुम क्या बोल रहे हो, इतनी मेहनत से तुम यहाँ पे आए हो पढ़ाई करने के लिए, तुम वापस क्यों जाना चाहते हो? तो महाराज बोलते, नहीं बस जो है अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। तो उनके दोस्तों ने, स्पेशली बिल ने, सुसन, जो भी उनके जो फ्रेंड्स थे, पीटर, सब ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन महाराज बोले नहीं, मैं तो भारत जाना चाहता हूँ। और फिर महाराज फिर से जो है हिच हैक करते हुए, गाड़ियों में किसी से राइड लेते हुए, वे वापस जो है भारत के लिए निकल पड़े। लेकिन वे भारत जाने के बाद कलकत्ता नहीं गए, वे सीधा चले गए हरिद्वार, और हरिद्वार से वे चले गए ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं एक गुरु चाहता हूँ, मुझे गुरु चाहिए जो मुझे समझाए सिखाए, मैं गुरु ढूंढूंगा। तो बस वो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अलग अलग आश्रम में जाते और वो गुरु की खोज कर रहे थे। और जहाँ जाते कभी कभी उन्हें कोई पसंद आ जाता, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता नहीं, इनका तो ये प्रॉब्लम है, उनका ये है। एक पर्सन जिनसे महाराज काफ़ी प्रभावित थे, वो थे आनंदमयी, मदर आनंदमयी, हम जानते हैं वो काफ़ी फेमस है। उनके आश्रम में महाराज जो है कुछ दिन थे, कभी गंगा किनारे ऐसे ही बैठ जाते, कभी शिवानंद आश्रम में, कभी यहाँ, कभी वहाँ। उसके बाद वह देवप्रयाग गए, जोशी मठ गए, और ऐसे ही उनकी जो ये जो यात्रा है, उन्हें अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जैसे डॉक्टर लाल से वो मिलते हैं, जो उन्हें एक विदेशी कपल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो जोशी मठ में बहुत सालों से एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। तो महाराज उनसे मिलते हैं, उनसे भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, और ऐसे वे यहाँ वहाँ घूमते हैं। और स्पेशली आनंदमयी माँ से वे काफ़ी इम्प्रेस थे, और उन्होंने एक बार डिसाइड किया कि मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वे आनंदमयी माँ के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपसे जो है दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आनंदमयी माँ ने उन्हें मना कर दिया। तो उनके जो शिष्य थे स्वरूपानंद स्वामी, वो लेके गए थे महाराज को, लेकिन आनंदमयी माँ ने कहा कि नहीं, तुम इस जगह के लिए नहीं बने हुए हो, तुम्हारा मार्ग कहीं और है, और जब तुम वो मार्ग अपनाओगे तब शायद दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हारे आश्रय लेके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तब तो महाराज काफ़ी यंग थे और उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, इनफैक्ट उनको तो दुख हो रहा था कि इन्होंने मेरी, मुझे दीक्षा क्यों नहीं दी, मुझ में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे में क्या गलती है। वे काफ़ी दुख हुए, लेकिन वे अपनी किताब में बताते हैं कि मुझे लगा कि मैं आनंदमयी माँ के पैर में गिर जाऊँ और बोलूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। लेकिन थोड़ा सा मेरा भी ईगो था, ठीक है अगर वो मुझे रिजेक्ट करती है तो ठीक, मुझे नहीं चाहिए उनसे दीक्षा। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो वे लास्ट में आनंदमयी माँ से मिलने गए फॉर द लास्ट टाइम कि मैं जा रहा हूँ। तो जब वो अंदर गए तो देखा कि वे सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। तो यूजुअली हम देखते हैं ना, भारत में संप्रदाय राइट हैंड से चीज़ें दी जाती है, लेकिन वे लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और जब महाराज अंदर आए, कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने राइट हैंड से महाराज को एक सफरजन दिया, एक एप्पल दिया। और फिर जो महाराज के दोस्त बन गए थे, काफ़ी गहरे दोस्त बन गए थे स्वरूपानंद, जो भी आनंदमयी माँ के शिष्य थे, वो स्टेशन छोड़ने आए महाराज को, और उन्होंने महाराज से कहा कि क्या तुमने देखा जो मैंने देखा? तो महाराज ने कहा क्या देखा? तो बोला तुमने देखा नहीं, वे सबको लेफ्ट हैंड से दे रही थी लेकिन तुमको राइट हैंड से दिया। तो बोला हाँ, महाराज ने बोला हाँ मैंने देखा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। तो स्वरूपानंद ने कहा कि जब आनंदमय माँ सबको प्रसाद देती है तो वो उसमें अपने आशीर्वाद भी सबको देती है, और कभी कभी ये जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, जब उनके पैर कोई छूता है तो उनके अच्छे कर्म जो पैर छूता है उनको चले जाते हैं, और एज ए रिजल्ट वो सिक हो जाते हैं, उनको बीमार हो जाती है। तो क्योंकि आनंदमयी माँ का दिल जो ऐसा है बहुत ज़्यादा दयालु है, वो प्राय बीमार हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पैर छूते हैं और वे उनके कर्म ले लेती है। और जब वे प्रसाद भी देती है सबको, इसीलिए वे लेफ्ट हैंड से देती है क्योंकि वे अपने अच्छे कर्म को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती। लेकिन तुमने देखा, उन्होंने तुमको राइट हैंड से दिया है तो तुम्हारी ऊपर उनकी विशेष कृपा है। तो महाराज इसी बात को जो है आनंद से लेके, ठीक है चलो मुझे आशीर्वाद मिला एक स्पिरिचुअल पर्सन का, और बस वे निकल गए। वहाँ से वे कलकत्ता पहुँचे। जब वे कलकत्ता पहुँचे तब उन्हें पता चला उनका दोस्त मार्क, जिनके साथ में उन्होंने हिच हैकिंग की थी, वे भी कलकत्ता उनसे मिलने के लिए आए, और उन्हें कहा चलो दोनों मिलके नेपाल चलते हैं। और जब वहाँ पे दोनों नेपाल भी हिच हैकिंग करते हुए पहुँचे, पोखरा पहुँचे, तब वहाँ महाराज को पता चला कि मार्क जो है वे गलत दिशा में जा रहा है, वे कुछ ड्रग्स का डील कर रहा है। तो महाराज ने उसके साथ में संबंध छोड़ दिया, बोले मार्क के साथ में और वो एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। उसके बाद में जो है वे कलकत्ता में ही अपना जीवन गुजार रहे थे और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका दोस्त प्रसून जो जर्मनी में पढ़ाई करने गया था, सबसे पहले जिसके साथ महाराज ने जर्नी शुरू की थी, वो धोती कुर्ता पहन के महाराज से मिलने आया और महाराज बहुत आश्चर्यचकित, ये क्या है? तब उसने कहा कि मैं इस्कॉन ज्वाइन कर लिया हूँ। तो महाराज ने कहा ये सब तो ठीक है लेकिन ये धोती कुर्ता ये सब क्या है? तो महाराज को कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा नहीं अब तो मैं जो है इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर लिया हूँ और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी इस्कॉन ज्वाइन कर ली है। हालांकि महाराज को तब याद आया कि उन्होंने भी जब वे हैम्बर्ग में थे इस्कॉन के कुछ भक्तों से वे भी मिले थे, लेकिन उनकी फर्स्ट इम्प्रेशन इस्कॉन के भक्तों की अच्छी नहीं थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और महाराज भी वहाँ पे जो है शायद कोई होटल से या कैंटीन से खाना खा के बाहर निकल रहे थे और ये भक्त उनको मिल गए, तो इस भक्त के साथ में वे क्योंकि वो धोती कुर्ता पहने हुए थे तो महाराज ने उनके साथ बातचीत की, तो उसमें से एक भक्त जो महाराज के साथ बात कर रहे थे वे रेस्पेक्टफुल नहीं थे किनकी तरफ, रामकृष्ण मिशन के तरफ या बुद्धिज़्म के तरफ, उन्होंने कुछ रॉन्ग कमेंट दे दी। अब उन दिनों में तो क्या महाराज सी कलकत्ता से है, बंगाली है, बचपन से रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है और अगर रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर कोई कुछ उल्टा फुल्टा बोलता है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों बात कर रहे, बिकॉज उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए थे उन्हें अच्छा नहीं लगा, वे साइलेंटली प्रसून को बोले चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ऑफकोर्स महाराज अपनी किताब में इस बात को बताते हुए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं कि कभी कभी हमारे पर्सनल बिहेवियर से हम शायद किसी को इस्कॉन से हमेशा के लिए दूर कर ले, कि इस्कॉन की फिलॉसफी सुपर है, इस्कॉन का सब कुछ सुपर है, शायद हमें अगर प्रेजेंट करना ना आए या हमारे शब्द में अगर कोई गलती हो, हमारे व्यवहार ठीक ना हो, तो शायद ये प्रामाणिक संस्था से हम लोगों को दूर कर दे सकते हैं। इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, अगर हमें नहीं आता प्रेजेंट करना तो हमें नहीं करना चाहिए प्रेजेंट, हमें प्रसाद देके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें अगर प्रचार करना नहीं आता और हम ऐसी कुछ वाणी कठोर बोल देते हैं कि हम किसी के दिल को चुभा देते हैं और वे दूर हो जाते हैं भगवान से, तो इसलिए महाराज को जो है काफ़ी इस्कॉन पे काफ़ी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनके जो मित्र है प्रसून, वे उनको कहते हैं कि नहीं मैंने एक किताब पढ़ी है श्री ईशोपनिषद और मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ, और उनका दीक्षा भी हो गई थी, इनका दीक्षा का नाम था सर्व भावना दास अधिकारी, और महाराज को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था कि ये जर्मनी छोड़ के दीक्षा लेके दिल्ली में जो है मंदिर में सेवा कर रहा है। अब महाराज ने उसको कहा ठीक है चलो तुम मेरे मित्र हो, चलो दोनों जाके कहीं जो है गपशप करते हैं, खाना खाते, चलो होटल चलते हैं। तो ये सर्व भावना दास बोलते नहीं नहीं मेरी तो दीक्षा हो गई, मैं होटल नहीं आ सकता। तो महाराज कहते मैं तुमको वेजिटेरियन होटल में ले चलता हूँ, बोलता हाँ वेजिटेरियन होटल में ही ले जाओगे लेकिन वो प्रसाद तो नहीं है ना, वो जिस पॉट्स में खाना बनाते हैं उसमें तो नॉनवेज भी तो कुकिंग हुआ होगा और वो कृष्ण का प्रसाद नहीं है। तो ऐसे जो है ये सर्वभावना प्रभु की छोटी छोटी बातों को देख के महाराज काफ़ी स्तब्ध रह गए कि इतना चेंज इसमें कैसे आ गया, वे काफ़ी प्रभावित हो गए। उसके बाद में ये जो सर्वभावना प्रभु है उनके मित्र प्रसून प्रभु, वो महाराज को बोले ठीक है तुम एक बार मेरे साथ कलकत्ता इस्कॉन मंदिर में तो आओ। अब महाराज के घर के काफ़ी पास में था वो कलकत्ता का टेम्पल, लेकिन आज तक महाराज कभी अंदर नहीं गए थे, वहाँ से पास हो जाते थे, लेकिन अब उनके लॉन्ग टाइम दोस्त जब उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे तो महाराज ने बोला ठीक है, और महाराज गए। अब जैसे वो गए, नए थे, पहली बार आए थे, और वहाँ पे जो पुजारी थे अनिर्देश्य वापू प्रभु, महाराज लिखते हैं उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं और उनको कहते हैं मेरे साथ अंदर आओ, तो उनको डीटी किचन में ले जाते हैं और महाराज को बोलते हैं ये देखो थोड़े फ्रूट्स हैं, देखो तुम फ्रूट्स काटो। तो महाराज वहाँ पे फ्रूट्स काटते हैं, धोते हैं और फिर उसको डीटी प्लेट्स में डालते हैं, फिर वो भगवान को ऑफरिंग करते हैं, और ऑफरिंग होने के बाद जब वो प्रसाद बाहर लेके आते हैं तो महाराज देखते कि कुछ भक्त लोग वहाँ पे पंक्तियों में बैठे हैं और सबको प्रसाद देते हैं, और फिर ये जो पुजारी थे वो महाराज को भी एक प्लेट में प्रसाद दिए, खुद भी प्रसाद लिए और दोनों बैठ के खाए। अब जस्ट सी द डिफरेंस, वहाँ इस्कॉन हैम्बर्ग में भी वो कुछ डिवोटी से मिले थे जहाँ पे वो डिस्करेज हो गए कि मैं कभी किसी डिवोटी से बात नहीं करूँगा, और यहाँ पे उनका बिहेवियर इतना प्यारा था कि महाराज को इतना अच्छा लगा उनका मीठा बिहेवियर, जिस तरह से रेस्पेक्टफुली प्रसाद दिया, तो महाराज धीरे धीरे रोज जाने लगे और ये अनिर्देश्य प्रभु से जो है वे बातें करते और कभी कभी प्रसाद के बाद में बस ऐसे ही बैठ जाते गैलरी में बहुत सारी बातें करते हैं और अनिर्देश प्रभु जो है उनको अलग अलग बातें बताते हैं। और फिर एक दिन महाराज का दिल किया, चलो मैं भी एक किताब खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, ये भक्त कितने अच्छे हैं, इनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितने प्यारे से बात करते हैं, महाप्रसाद कितना टेस्टी है। ये 1976 की बात है। तब उन्होंने सोचा मैं भी ईशोपनिषद पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी ईशोपनिषद पढ़ के जो है भक्त बन गया। लेकिन बुक स्टॉल में जब पूछा तो बोला कि स्टॉक नहीं है। तो बोला क्या किताब है आपके पास, तो बोले भक्ति रसामृत सिंधु, यही किताब है। तो महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु ले ली और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब जैसे जैसे महाराज ने ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना शुरू किया, महाराज अपनी किताब में बताते इतना उनको आनंद आ रहा था, वे बोल रहे कि मैं पढ़ता रहा, कब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई पता नहीं, जब मैंने सुबह आँख खोली वो किताब वहीं थी, मैं फिर से पढ़ने लगा, मैं जैसे पागल जैसे हो गया था, मुझे वो किताब नीचे रखने का दिल नहीं करता था, लगता था मैं सब समय पढ़ते रहूं। और जब मैं पढ़ते मुझे एक स्वप्न आया, सपने में मैंने देखा प्रभुपाद उस सिंहासन में बैठे हुए हैं और इतने तेजस्वी लग रहे हैं। प्रभुपाद की किताब पढ़ते मुझे प्रभुपाद पे अटैचमेंट हो गई और बस मैंने एक दिन सोच लिया मन में यही मेरे गुरु है, ये जो बोल रहे हैं सही है, ये कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भगवान परम पुरुष भगवान जो है उनके साथ हमारा संबंध हो सकता है, वे निराकार ब्रह्म नहीं है, हम भगवान के साथ संबंध एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और वहाँ पे नेक्टर ऑफ डिवोशन में महाराज बोलते हैं, मैं स्पेशली प्रभावित हुआ जब मैंने सुना कि वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे अलग अलग टाइप के मोक्ष हैं, आप भगवान में लीन हो सकते हो, भगवान के लोक में रह सकते हो, भगवान जैसा ऐश्वर्य पा सकते हो, लेकिन एक भक्त को ये सब नहीं चाहिए, वो भगवान के साथ रहना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है। और महाराज ने कहा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा तो क्या मैं भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकता हूँ, और ये बात वे काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर वे गए कलकत्ता मंदिर के भक्तों में जो कुंडली दास थे और जो दूसरे भक्त थे उनको जाके कहने लगे महाराज कि मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ, प्रभुपाद मेरे गुरु है, प्रभुपाद कहाँ है मुझे बताइए, वो कहाँ है बताइए, मैं वहीं चला जाऊँगा, मुझे उनसे दीक्षा चाहिए, वो मेरे गुरु है, मैं उनको सरेंडर करना चाहता हूँ। भक्तों ने कहा ठीक है, एक मिनट शांति रखो, प्रभुपाद यहाँ नहीं है, प्रभुपाद कहाँ है, प्रभुपाद तो अमेरिका में है, कब आएंगे, प्रभुपाद अक्टूबर में आएंगे, अच्छा तो आप कहाँ आएंगे, मैं वहीं चला जाता हूँ, थोड़ा शांति रखो, अभी तो अमेरिका में है, अक्टूबर में आएंगे, जब वो आएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन महाराज के मन में बेचैनी सी हो गई थी, अब वो उनकी इतनी ज़्यादा मन में ये हो गए थे बस मुझे प्रभुपाद जी से जुड़ना है, कैसे भी मुझे इमीडिएटली प्रभुपाद जी की मर्सी चाहिए, मैं क्या करूँ, और मन कहीं नहीं लग रहा था। तो उनके मन में विचार आया ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं मायापुर चला जाता हूँ, कलकत्ता से पास में ही था और मायापुर में इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स था, बहुत सारे भक्त थे, हालांकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है तो चलो मैं चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद भी लूँगा, गंगा में स्नान करूँगा, भक्तों का एसोसिएशन लूँगा, बस ऐसे सोच के महाराज निकल पड़े, मायापुर पहुँच गए। जैसे मायापुर पहुँचे वहाँ पर कुछ नहीं था, एक छोटा सा बिल्डिंग था, लोटस बिल्डिंग था, और बहुत सारे खेत थे, बस और कुछ नहीं था। महाराज वहाँ गए, वहाँ भी बस ये एक चीज़ उन्हें बहुत प्रभावित की है कि जो वहाँ पे भक्त थे इतना प्रेम दे रहे थे महाराज को, इतना प्यार, उनको अकोमोडेशन दिया, उनको अच्छे से प्रसाद देते थे, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, तो महाराज को बहुत अच्छा लगने लगा। तो वहाँ पे जो राघव पंडित दास नाम के एक भक्त थे वे प्रवचन दे रहे थे और महाराज को प्रवचन बहुत अच्छा लगा, तो देखा ये तो विदेशी है, कितना सुंदर बोल रहे हैं, कितना सुंदर संस्कृत में श्लोक बता रहे हैं, उनको बहुत आनंद हुआ। और फिर वे भक्तों ने कहा कि आप यहीं रह सकते हो हमारे साथ, आप यहीं प्रसाद ले सकते हो, तो उन्हें अच्छा लगा, वे वहाँ रह गए। अब एक चीज़ बोलते हैं महाराज मुझे वहाँ पे अच्छी नहीं लगती थी, सुबह 3:30-4 बजे उठना पड़ता था, महाराज बोलते थे मुझे तो आदत थी सुबह 8 बजे तक सोने की, तो मुझे लगता था कि इस्कॉन में सब अच्छा है बस मंगल आरती अच्छी नहीं है, उठना क्यों पड़ता है सुबह सुबह, तो कभी कभी उनको उठने का दिल नहीं करता था। तो उनके कमरे में जो थे तीर्थपाद प्रभु वो बहुत सिंसियर थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे, नहा धोते थे, और जब वो नहा धो के बाथरूम से बाहर आते थे तब महाराज तभी भी सोते रहते थे, तो वो कभी कभी क्या करते थे महाराज जिस बिस्तर में सोए हुए पूरे बिस्तर को अपने एक हाथ से उठा लेते थे महाराज के साथ, और अगर अभी भी महाराज नहीं उठेंगे तो वो गिर जाएंगे इसलिए महाराज को उठना पड़ता था, और फिर दोनों ठहाके लगा के हंसते थे और महाराज को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ लव एंड अफेक्शन है डिवोटीज़ के बीच में। तो फिर महाराज उठते थे और फिर मंगल आरती में जाते थे, तो बहुत सुंदर एक रूटीन बन गया था। वो मंगल आरती जाते, फिर जप करते, उसके बाद गुरु पूजा होता, उसके बाद भागवतम क्लास होते थे, सबको प्रसाद मिलता था, और उसके बाद में जो है वे कोई ना कोई सेवा में नियुक्त हो जाते थे। और सबसे ज़्यादा महाराज बोलते, मुझे फैसिनेटिंग लगता था कि ये अमेरिकन लोग इतना सुंदर जय राधा माधव गाते हैं, कितना सुंदर क्लास देते हैं, बहुत प्यारा लगता था। एक दिन महाराज ने एक सन्यासी से क्लास सुना, काफ़ी यंग थे, सत्यधन स्वामी। महाराज काफ़ी इम्प्रेस हुए उनसे, उनको लगा कि अरे मैं से महाराज का दिल था पहले कि मैं थोड़े दिन के लिए रहूँगा, उसके बाद देखते हैं, जमेगा तो जमेगा, नहीं जमेगा तो चला जाऊँगा। लेकिन जैसे एक एक दिन जा रहा था उन्हें और भी अच्छा लग रहा था, और स्पेशली उस दिन जब उन्होंने सत्यधन महाराज का क्लास सुना तो उन्हें इतना अच्छा लगा। महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे इमीडिएटली लगा कि बस हो गया, मैं इस्कॉन में रहना चाहता हूँ। तो इस्कॉन में रहना चाहता हूँ मतलब इस्कॉन के डिवोटीज जैसे मुझे भी तो दिखना चाहिए। तो महाराज ने सोचा अच्छा चलो मैं बाल काट के आ जाता हूँ। तो वो सीधे गए बाहर और एक नाई को पकड़ा, बोला मेरा मुंडन कर दो। अब पूरा मुंडन कर दिया, पैसे से एक धोती एक कुर्ता खरीदा, पूरा क्लीन शेव कर लिया, धोती कुर्ता पहना, गंगा में स्नान किया और आ गए। अब जैसे भक्तों ने देखा महाराज को, बोला ये क्या किया तुमने, ये क्या है? बोला बस मैं तो अब डिसाइड कर लिया मैं यही रहूँगा। तो सारे भक्त जय एकदम खुश हो गए, पर बहुत अच्छा काम किया। अब क्या है, महाराज जो है फॉर्मली उनके ग्रुप में आ गए। अभी तो गेस्ट थे ना, पैंट शर्ट में थे, अब क्या हो गया एकदम धोती कुर्ता क्लीन शेव, तो अब जो है फॉर्मली उनके ग्रुप में आ गए, भक्त बन गए। तो अब उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब वहाँ पे जो एक डिवोटी थे उन्होंने कहा कि चलो अब मैं तुमको जो है यहाँ के इंचार्ज से मिलाता हूँ। तो वहाँ के जो हेड थे उन दिनों में, हिज होलनेस जयपताक स्वामी महाराज और भवानंद महाराज, और उन दिनों में ऐसा था कि लोटस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में मंदिर था, ऊपर में डीटी किचन था और कुछ भक्तों के रहने की जगह थी, उसके ऊपर में प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स था, और टेरेस के ऊपर में एक कमरे में जयपताक स्वामी महाराज रहते थे और एक कमरे में भवानंद महाराज रहते थे। अरे वे दोनों जो है जीबीसी थे, हेड थे मायापुर के, तो उनके पास में लेके गए। तो महाराज बोलते हैं कि मैंने उनको प्रणाम किया और काफ़ी डरा हुआ था मैं, वो दोनों काफ़ी गंभीर थे, और जयपताक स्वामी महाराज ने मुझे कहा कि देखो ये जो मधुसेविता प्रभु है वे टेम्पल कमांडर है, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या सेवा करना है, वो जो बताते हैं तुम वो काम करो। महाराज ने कहा ठीक है। अब मधुसेविता प्रभु ने कहा उनको कि देखो तुम्हारा सबसे पहला काम है किचन में जाओ, किचन में सेवा करो। महाराज बोला किचन में मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं, लेकिन ठीक है बोला है तो जाएंगे। अब जैसे किचन के अंदर में गए तो वहाँ पे एक बंगाली भक्त था जो खाना बनाता है। तो अब ये बंगाली भक्त जो है महाराज को देख के कुछ खुश नहीं हुआ कि मेरे किचन में ये कौन आ गया है थोड़ा सा इंटरफेयर करने के लिए। तो बोला क्या इधर क्यों आए? बोले नहीं मेरे को मधुसेविता प्रभु ने बोला है कि मैं आपको प्रसाद बनाने के लिए मदद करूँ। बोले ठीक है क्या मदद करोगे, एक काम करो। जी उन दिनों में तो गैस नहीं था, तो प्रसाद बनाने के लिए लकड़ियाँ लानी पड़ेगी ना, उड़न उसमें बनाएंगे खाना, जो क्या बोलते हैं हिंदी में ना, जो लकड़ियों से जो है खाना बनाना पड़ेगा। तो बोले जाओ एक काम करो लकड़ियाँ लेके आ जाओ। कहाँ है लकड़ियाँ? बोला स्टोर रूम में लकड़ियाँ है। तो इतनी सी बात बोल के जो वो किचन के इंचार्ज थे वो चले गए। अब महाराज को ये बताया भी नहीं कि कितनी लकड़ी लानी है। तो महाराज ने क्या किया, स्टोर रूम में जितनी भी लकड़ी थी बस लाते रहे, पूरी रसोई घर लकड़ी से भर गई। थोड़ी देर के बाद में वो बंगाली भक्त आया, बोला ये क्या किया तुमने? बोला आपने तो कहा था कि लकड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं लकड़ियाँ लेके आ गया। तो उसने कहा इतनी सारी लकड़ियाँ चाहिए क्या, एक दिन का खाना बनाना है कि पूरा महीने का? जाओ सब लकड़ियाँ वापस रखो। तो फिर सारी लकड़ियाँ उठा के महाराज ने वापस रखी। फिर थोड़ी देर के बाद इस भक्त ने बोला ठीक है एक काम करो। अब महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि वो मेरे तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे कि मैं कोई यूजलेस आदमी हूँ, मेरे से कोई काम नहीं होगा। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। तो बोला देखो एक काम करो, तुम राइस लेके आओ, दाल लेके आओ स्टोर रूम में, देखो वहाँ पे पड़ा हुआ है। बस इतना बोल के वो फिर से कहीं चला गया। सी उन दिनों में भक्त कम थे, सेवा ज़्यादा थी, खड़े रहने का किसी के पास टाइम नहीं है, कुछ कोई ना कोई और सेवा में वे चले जाते हैं। अब महाराज को लगा ये फिर से बिना कुछ बोले चले गया, कितना राइस लाना है कितना दाल लाना है समझ में नहीं आया। अब महाराज ने क्या किया, वो स्टोर रूम से जो है 50 kg बैग राइस का, दाल का, बस ऐसे। अब वो राइस के जो बैग है काफ़ी हैवी है, कंधे पे तो उठा नहीं सकते। तो महाराज उस बैग को खींच खींच के ला रहे हैं। अब जब खींच के लेके आ रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं, वो बैग कहीं सीढ़ी के पास में फंस गई। तो फंस गई तो महाराज ने देखा नहीं, वो फिर भी खींचते रहे। तो खींचते रहे तो क्या हुआ, पूरी बैग जो है ब्लास्ट हो गई, पूरा दाल जो है सब कुछ जमीन पे गिर गया। अब इतना जोर से आवाज आया तो दूसरे भी एक दो भक्त आ गए, और जो कुकिंग इंचार्ज थे वो भी आ गए। फिर से उन्होंने महाराज को ऐसा लुक दिया कि अरे बाप रे, इसको किसने भेजा मेरे किचन में, एक काम से ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है, अब कौन उठाएगा ये सारे दाल, चलो उठाओ। फिर महाराज उठाने लगे। महाराज कहते अपने किताब में, मुझे लगा कि ये क्या है, शायद मैं यूजलेस हूँ क्या, क्या हो रहा है, कुछ भी मुझसे ठीक नहीं हो रहा है। फिर दूसरे दिन मैंने मधुसेविता प्रभु को पूछा कि आज मुझे क्या करना है, तो उन्होंने हाथ जोड़ा, किचन में तो नहीं जाना है तुमको, एक काम करो तुम घास काटो, घास काटने के लिए जाओ। महाराज ने कहा ठीक है मैं घास काटूंगा, तो घास काटने के लिए चले गए दूसरे दिन। अब जैसे ही भवानंद महाराज को पता चला कि महाराज को घास काटने के लिए भेजा, तो उन्होंने डांट दिया मधुसेविता को, अरे तुम उसको घास काटने के लिए क्यों भेजा है, घास काटना उसकी सेवा नहीं, उसके लिए वो सूटेबल नहीं है, उसको वापस लेके आओ। तो मधुसेविता प्रभु बोले ठीक है। अब महाराज बोले मुझे कोई सेवा नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ। तो मैं अंदर लाइब्रेरी में गया और मैं किताब पढ़ने लगा। तो मधुसेविता प्रभु ने बोला अरे इधर आओ, तुम लाइब्रेरी में किताब क्यों पढ़ रहे हो, मैं तुमको और सेवा देता हूँ। महाराज ने बोला आफ्टरनून टाइम तो सब डिवोटीज का पर्सनल परस्यूट होता है, तो मैं मेरे खाली समय में किताब पढ़ रहा हूँ, तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है। बोला नहीं तुमको कुछ, तो मुझे अब समझ में आ गया कि मैं ना भवानंद महाराज मेरी मदद करते हैं, कोई भी समस्या हो तो मैं उनके पास गया कि देखो ना मुझे ये किताब नहीं पढ़ने दे रहा है। तो भवानंद महाराज ने मधुसेविता दास से पूछा कि क्यों तुम उसको किताब नहीं पढ़ने दे रहे हो। तो मधुसेविता ने कहा कि भाई मुझे ना सत्यधन महाराज ने कहा कि किसी भी भक्त को ना 2 मिनट के लिए भी खाली नहीं रखना है, नहीं तो वो माया में पड़ जाते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स, इसलिए उनको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए, इसलिए मैं उनको पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको कुछ काम दे रहा हूँ। भवानंद महाराज ने बोला कि अरे ये क्या है। फिर उन्होंने सत्यधन महाराज को बुलाया, बोला ये क्या है, ये कोई हिटलर, ये कोई नाजी का कैंप है क्या, भक्तों से प्यार से पेश आना चाहिए, नया है इसे प्यार देना चाहिए, आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कोई माया में नहीं पड़ेगा, किताब पढ़ रहा है पढ़ने दो उसको। सत्यधन महाराज ने बोला ठीक है। अब सबको समझ में आ गया कि महाराज जो है महाराज को विशेष प्यार कर रहे थे। अब दूसरे दिन फिर से उन्होंने पूछा आप मेरी आज की सेवा क्या है, तो बोला ठीक है तुम एक काम करो गौशाला में जाओ गाय को देखो। तो वहाँ पे सात्विक दास नाम के एक डिवोटी थे जो गाय को देख रहे थे। तो महाराज ने बोला ये बहुत अच्छी सेवा है। तो वे भवानंद महाराज के पास गए, बोला मैं ना गौशाला में सेवा करूंगा, भगवान कृष्ण को भी गाय बहुत प्रिय है तो मैं गाय की सेवा करूंगा। तो भवानंद महाराज ने बोला नहीं नहीं ये सेवा तुमको सूट नहीं करती है, ये सेवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बोला ठीक है। फिर हिरण्यगर्भ प्रभु वो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। महाराज ने सोचा ये मेरे लिए अच्छा होगा, वो फिर भागे भवानंद महाराज के पास, महाराज मैं गुरुकुल में पढ़ाऊंगा, टीचर हेल्प करूंगा। तो भवानंद महाराज ने बोला ये सेवा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। महाराज को बहुत दुख लगा, मैं कुछ भी बोलता हूँ ये सेवा मेरे लिए ठीक नहीं, ये सब मेरे लिए कौन सी सेवा ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं टीच कर सकता हूँ मुझे, वो कहने लगे। तो भवानंद महाराज ने बोला तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो किसको टीच कर रहे तुम्हें पता है, आसपास के गांव के बच्चे जो अभी भी बिस्तर गीला करते हैं, पूरे क्लासरूम में स्मेल आती है, मैं जहां तक तुम्हें समझ पा रहा हूं तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, तुम्हारी एक अलग ही कल्पना है इस्कॉन के बारे में, एक अलग ही स्वप्न में तुम हो, वो पूरा स्वप्न टूट जाएगा, ये सेवा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए क्या राइट सेवा मैं बताऊंगा, वो सेवा तुम्हें जरूरत नहीं है। महाराज को एक मिनट के लिए लगा कि क्या मेरे में कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है क्या, मैं जो सेवा करता हूँ बोलता ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उनको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। अभी फाइनली जो है वे हिज ओल्डनेस जयपताका स्वामी महाराज के साथ जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। उन दिनों में मर्सिडीज बेंज गाड़ी जर्मनी से भक्त लाए थे, तो उसमें जयपताका महाराज क्या करते थे, सारे ब्रह्मचारी लोग को बिठाते और वे जो है सुबह से शाम जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते और शाम को वापस आते, फिर नहा धो के सब जो है संध्या आरती अटेंड करते। तो ये रूटीन ठीक लग रहा था, लाइफ सेटल हो गई मायापुर में, महाराज भी सेटल हो गए, पूरा यही रूटीन, सुबह मंगला आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, शाम को आना, संध्या आरती, संध्या आरती के बाद में सारे भक्त कृष्ण बुक से जो है डिस्कशन, अपनी रियलाइजेशंस और सो जाओ, लाइफ बढ़िया चल रही थी। अब सडनली ऐसा हुआ, वहाँ पे एक सिस्टम होता था, एक माताजी थी वृंदावन विलासिनी माताजी, बहुत सुंदर मिठाई बनाती थी, और वो जो मिठाई बनाती थी वो भगवान के मंगला भोग में, शाम के भोग में चढ़ाई जाती थी, और भोग धरने के बाद में वो जो प्लेट आता था मिठाई का, उस प्लेट को पहले जयपताका महाराज और भवानंद महाराज को दिया जाता था, उनके खाने के बाद में जो बच जाता था वो नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके आते थे और वहाँ पे सारे भक्तों को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो रोज वो प्लेट जब ऊपर जाएगी छत पे, सारे भक्त एकदम इंतजार में कि वो प्लेट आएगा और हमें स्वीट्स मिलेगी। एक दिन देखा वो प्लेट आ ही नहीं रही। मधुसेविता प्रभु जो टेम्पल कमांडर थे वो प्लेट लेके आते थे, तो भक्तों को लगा कि ये प्लेट आ क्यों नहीं रही, वे सब फर्स्ट फ्लोर में खड़े थे, चलो हम ही जाके देखते हैं। तो भक्त सारे ऊपर गए तो क्या देखा कि मधुसेविता प्रभु खुद ही कहीं और अलग से कोने में बैठ के मिठाई खा रहे हैं। उन्होंने सोचा पहले मैं खा लूँ उसके बाद में दूंगा, और फिर सारे भक्तों ने उनको एक साथ में पकड़ लिया, ये तुम क्या कर रहे हो, सारे हंसने लगे। और महाराज बहुत स्वीटली इस पास टाइम को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर हमने बोला अरे ये क्या है, तुम अकेले अकेले खा रहे हो, हमको भी दो। तो मायापुर में लाइफ बढ़िया हो गई। बहुत सारे महाराज बोलते मायापुर में उन दिनों में इतने सारे सांप होते थे, बड़े बड़े कोबरा वेनमस के स्नेक्स होते थे। और वहाँ पे एक भक्त था प्रद्युम्न दास जो उड़ीसा से आया था, सांप मारने में बहुत निपुण था, कम से कम 50 सांप मार चुका होगा। फिर किसी भक्तों ने बोला इतने सांप नहीं मारते, ये सांप जो कोबरा होते ना काफ़ी रिवेंजफुल होते हैं, बदला लेते हैं वो। और ये बात सच हुई। एक बार प्रद्युम्न प्रभु चल रहे थे तो उनके पीछे धीरे धीरे एक कोबरा जा रहा था उसे डंक मारने के लिए। तब किसी भक्त ने देख लिया और एकदम चिल्लाया, प्रद्युम्न प्रभु देखिए आपके पीछे सांप। तो महाराज बोलते हैं कि कभी कभी जब मायापुर में फ्लड आ जाता था तो 10 फीट तक पानी आ जाता था, और कभी कभी ये सांप पानी के अंदर में, कमरों के बीच अंदर में, झाड़ के शाखाओं पे यहाँ वहाँ सांप होते थे। और उन दिनों में कंडीशंस बहुत ऑस्टियर थी। मायापुर में किसी के पास अटैच बाथरूम नहीं था। बाथरूम और क्या मतलब, जो लोग थोड़े सीनियर थे इस्कॉन में वो लोटस बिल्डिंग में रहते थे, और बाकी जो नए भक्त है जूनियर है वो जो मेन गेट, अभी भी हम देखते हैं ना मायापुर का जो मेन गेट है, वो मेन गेट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, वहाँ पे वो रहते थे। अटैच बाथरूम नहीं था। और मायापुर में जो खुली सी खेत है, वो खेत में 4 हैंडपम्प होते थे, वो हैंडपम्प में से पानी निकाल के जो है नहाना है धोना है। और बाथरूम नहीं था, लेकिन जो जूट के कपड़े थे उसको वुडन फ्रेम में वो जूट के कपड़ों को बांध के टॉयलेट, मतलब कोई फ्लश या टॉयलेट का कमोड नहीं था, वो मट्टी में ही थोड़ी सी खुदाई करके एक छेद बना दिया, होल बना दिया है, और उसी होल को जूट के कपड़ों से चारों ओर बंद करके बाथरूम बना दिया, बस यही बाथरूम था। ऐसे ही जीते थे महाराज भी जो है इस लाइफ में, वे सेट हो गए। अब वहाँ पे महाराज बताते हैं कि एक भक्त थे सीतानाथ प्रभु, वे सांप से काफ़ी डरते थे, उनको इतना डर लगता था कि उन्हें सपने में भी सांप दिखाई देते थे, और कभी कभी दिन में भी उनको लगता था कि सांप मेरे पेट के ऊपर है, मेरे बेड के ऊपर है, मेरे कमरे में है। तो एक दिन भवानंद महाराज ने उसको बोला, देखो सीतानाथ इतना नहीं डरते, अगर तुम सांप से इतना डरोगे ना तो तुम कभी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि गोलोक वृंदावन में भी सांप है। बोला अच्छा कौन सा सांप? बोला अनंत शेष गोलोक वृंदावन में होता है, तो तुम्हें सांप से नहीं डरना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं कि जब सीतानाथ ने ये बात सुनी तो उसका रिएक्शन तो कोई खास नहीं था, क्योंकि उसको इतना डर लगता है, भवानंद महाराज की बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराज बोलते हैं मुझे उस बात से बहुत फर्क पड़ा, उस दिन के बाद से मैं कभी भी मायापुर में कहीं भी सांप को देखता तो मैं सोचता अच्छा ये तो अनंत शेष है, और मुझे जो है सांप का डर चला गया। उसके बाद में फाइनली महाराज को सेवा मिल गई, मायापुर में। क्या सेवा थी? वहाँ पे पंचरत्ना प्रभु के नाम के जो एक डिवोटी थे जो अमेरिकन थे, और वो लॉन्ग बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज कर रहे थे। अब लॉन्ग बिल्डिंग हम जानते हैं मायापुर में काफ़ी लंबा, 750 फीट लंबा, और 165 रूम्स बन रहे थे उसमें। तो उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और उनके जो एक असिस्टेंट थे कैनेडियन डिवोटी थे भूमनदास। तो पंचरत्न प्रभु ने महाराज से कहा ठीक है तुम एक काम करो, इस भूमनदास के साथ में तुम जो है असिस्टेंट की सेवा करो, मुझे मदद करो। अब उन्हें क्या मदद चाहिए थी कि कलकत्ता से वो मटेरियल खरीदते थे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको ट्रेन में डालते थे, और भक्तचारु महाराज जो है वे परमिशंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करना, ट्रेन से जो है सामान उठवाना, वो सारे क्लियरेंस लेके आना, वे सारे काम करते थे, क्योंकि वे इंग्लिश भी जानते थे बंगाली भी जानते थे, तो काफ़ी कंफर्टेबल था सबको। तो फाइनली जो है बहुत अच्छा लगा महाराज को, वॉज हैप्पी कि फाइनली मेरी अपनी एक सेवा है, मैं भी बिजी हूँ, मुझे भी बहुत सारा काम है। लेकिन महाराज जब भी थोड़ा सा फ्री समय पाते तो वे आसपास के गौड़ीय मठ में जाते और वहाँ जाके उनसे प्रभुपाद जी के बारे में पूछते। उनकी बहुत इच्छा थी प्रभुपाद जी के बारे में और जानना। तो वे एक दिन गए थे देवानंद गौड़ीय मठ, वहां पे किसी वैष्णव ने उनको बोला कि आपके जो गुरुजी है श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल लिखे थे गौड़ीय पत्रिका में, वो सारे आर्टिकल है। तो महाराज को एक विचार आया कि क्यों ना मैं वो सारे आर्टिकल्स को लेके एक किताब तैयार करूं और मैं प्रभुपाद जी को गिफ्ट करूं। तो महाराज फिर उसको जो है, प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था सीरीज भगवानेर कथा, मैंने आनंद अमृत बाजार पत्रिका में एक आर्टिकल आया था कि दो ब्रिटिश रूल भारत में ख़त्म हो गया है, फिर भी कोई ना कोई समस्या है, हम इस जगत में खुश से कभी रह ही नहीं सकते, इस जगत में आनंद है ही नहीं, ऐसा कोई आर्टिकल था। उसके अपोजिट में श्रील प्रभुपाद ने भगवानेर कथा में बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा था कि क्यों नहीं मिलेगा आनंद, जरूर मिलेगा आनंद, भगवान कृष्ण से मिल सकता है, जो भगवान कृष्ण को सरेंडर करता है उसी आनंद मिल सकता है, इतना सुंदर उन्होंने लिखा था। तो महाराज ने सोचा कि मैं वो सारे आर्टिकल्स जो है जमा करके एक अच्छी सी पुस्तक बना के प्रभुपाद को गिफ्ट करूंगा। तो अब वो बहुत खुश थे, काफ़ी बिजी हो गए थे, लॉन्ग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, फ्री टाइम में किताब को संग्रह करना, उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे महाराज जो है मायापुर की लाइफ स्टाइल में एकदम मायापुर के ही भक्त बन गए थे, वो एकदम जुड़ गए थे। अब वहाँ पे गुरु कृपा महाराज जो है जापान से एक 15 भक्त को लेके आए थे, नामहट भक्त, मतलब वो जो भक्त थे अमेरिकन लेकिन जापान में प्रचार करते थे। तो गुरु कृपा महाराज जो है वो अपने ये 15 भक्तों को लेके मायापुर आए थे, और जब से वे उन 15 भक्तों को लेके मायापुर आए थे, मायापुर का एटमॉस्फेयर बदल गया था, क्योंकि ये लोग यंग थे, इतना सुंदर कीर्तन करते थे, और जब वे मंदिर में कीर्तन करते थे इतना एक्सटेसी हो जाती थी, सब नाचते थे। भक्ताचार्य महाराज बोलते कि हमें लगता था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, पता नहीं हम कहाँ है, इतना आनंद आता था कीर्तन में। अब एक तो भजन कीर्तन पूजा क्लास प्रसाद सेवा तो है, कभी कभी जो है वो लोग गंगा किनारे जाते थे, नहाते थे, एंजॉय भी करते थे, और गंगा किनारे वो लोग क्या करते थे, रेसलिंग मैच, कुश्ती करते थे, और कभी कभी कुश्ती क्या करते थे, मायापुर भक्त वर्सेस गुरुकृपा महाराज के डिवोटिस जापान के जो भक्त थे, दोनों के बीच में रेसलिंग मैच होता था। तो अब रेसलिंग मैच में ऐसा है ना, एक मायापुर का भक्त आएगा मायापुर की टीम से, फिर एक आएगा गुरुकृपा महाराज की टीम से, और फिर दोनों के बीच में रेसलिंग होगा, कुश्ती होगा, और फिर जो जीतेगा अपोजिट पार्टी उनको ई मतलब हार गए या कुछ जीत गए, तो बहुत आनंद का परिवेश था। एक दिन भक्तचारू महाराज का चांस आया, बोला चलो अभी तुम आओ। भक्तचारू महाराज बोले मैं तो ऐसे ही पतला सा दुबला सा था, मुझे उन्होंने 2 मिनट में डिफीट कर दिया, गुरुकृपा महाराज के जो टीम मेंबर्स थे मुझे इमीडिएटली डिफीट कर दिया, तो मुझे डिफीट कर दिया तो मैंने मेरा मुंह नीचा कर लिया, और ये लोग मेरे पे ए आप तो हार गए ऐसे चिल्लाने लगे। तो वहाँ पे जयपता का महाराज खड़े थे, उनको सहन नहीं हुआ, हमारे मायापुर के भक्त को ये लोग ऐसा बोलेंगे। अब कोई प्रिपेयर नहीं था, सडनली जयपता का महाराज जो है चिल्लाए शेर की तरह, मेरे साथ फाइट करो, कौन है, आ जाओ, मैं हूँ, आ जाओ आ जाओ। अब जैसे ही वो ऐसे चिल्लाने लगे, कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी को नहीं आना है, तो जयपता का महाराज बोला क्या हो गया, सब शांत हो गए, आओ आओ आओ, कौन आएगा। अब गुरुकृपा महाराज ने सोचा कि इज्जत का सवाल है, इस टाइम पे अगर मैं नहीं भेजूंगा तो हमारा, तो उनके टीम में जो सबसे ज्यादा लंबा था बोला ठीक है तुम जाओ जयपता महाराज के साथ, तुम करोगे फाइटिंग। तो गया, 2 मिनट में जयपता का स्वामी महाराज ने उसको एकदम पछाड़ दिया नीचे, खत्म। और भक्तचारू महाराज कहते हैं कि जयपता का महाराज को मेरे ऊपर इतना अफेक्शन था कि मैं नीचे गिर गया, मैं हार गया, उनको वो सहन नहीं हुआ, इसलिए वे खुद आ गए कि कौन है हमारे मायापुर के भक्त को हराएंगे। और फिर यहाँ पे अपने कुछ पेजेस में वो जयपता का महाराज के बारे में बताते हैं कि कैसे उनको उनके साथ में एक विशेष संबंध था, और वो कैसे उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे। वो कहते हैं अपनी किताब में कि जयपता का स्वामी महाराज एक नेचुरल लीडर थे, और उनके छत्र छाया में हमें सबको बहुत सेफ लगता था, बहुत सुरक्षित लगता था, कि वो इतने प्यार देते थे और हमारी रक्षा करते थे, और वो काफ़ी लंबे चौड़े थे। और बोला कि जयपता का महाराज के साथ हम लोग रोज रात को चैतन्य चरितामृत पढ़ते थे। एक दिन एक भक्त आया अभिमन्यु दास, वो जो है मायापुर मंदिर की सिक्योरिटी की देखरेख करता था, पहले इस्कॉन में आने से पहले वो मिलिट्री में था, तो इसलिए उनको ये सेवा दिया गया कि तुम मंदिर का सिक्योरिटी देखो। तो एक दिन हम सब चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, तो भागा भागा आया जयपता का महाराज को बोलने लगा कि महाराज चोर आ गए, चोर आए, बहुत सारे चोर आए हैं, डाकू चोर आए हैं। तो जयपता का महाराज ने कहा कि अरे कोई नहीं आया है, तुम भी बैठो चैतन्य चरितामृत पढ़ो। नहीं नहीं महाराज मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत सारे चोर डाकू हमारी और आ रहे हैं। तो जयपता का महाराज बोला ठीक है चलो, कहा है मेरा डंडा, तो उन्होंने डंडा लिया और बोला चलो देखते तुम्हारे चोर को, अभी हम देखते हैं। तो भक्त चरण महाराज बोलते कि हम सब भी उनके पीछे पीछे चले गए, महाराज हमारे आगे, हम पीछे, हम सब वहाँ पहुँच गए। तो देखा कि बहुत सारे बंगाली लोग हाथ में मशाल लेके जो है बोल हरी बोल करके हमारे पास आ रहे थे। हमें समझ में नहीं आया ये हमारे पास क्यों आ रहे हैं इतने सारे लोग। तब जब थोड़ा सा पास आए तब समझ में आया कि कोई मर गया है, वो बंगाल में वो सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना राम नाम सत्य है राम नाम, तो उसके मृत शरीर को जो है वो लेके जा रहे हैं, ये कोई डाकू नहीं है। फिर जयपत का महाराज बोलते हैं अच्छा ये कोई डाकू नहीं है, बस वो अपना ही जा रहे बोल हरी बोल, लेकिन ये सब विदेशी भक्त है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे मशाल लेके कहाँ जा रहे हैं, कहीं हमें अटैक तो नहीं करने वाले हैं। और फिर महाराज बोले चलो 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 सब वापस चलो, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बताते हैं कि जयपत का महाराज एक बहुत अच्छे रेसलर तो थे ही, लीडर तो थे ही, स्विमर भी थे, बहुत सारे लोगों को बचाते थे, कभी कभी कोई गंगा में डूब जाएगा कोई, उनको बहुत अच्छा स्विमिंग भी आता था और वो बहुत सुंदर बो एंड एरो चलाना भी जानते थे और हमेशा बुल्स आई पे जो है वे एरो लगाते थे। आप अगर भक्तचार्य महाराज की इस किताब को पढ़ो कृपा सिंधु ओशन ऑफ मर्सी, आपको भक्तचार्य महाराज का एक गुण के बारे में पता चलेगा कि वे कितना हर एक डिवोटी को अप्रिशिएट करते हैं। इनकी पूरी किताब में उन्होंने हर एक भक्त के बारे में इतना गुणगान किया हुआ है। तो आप जैसे हो आपको दूसरों में वैसा ही गुण दिखाई देगा। जैसे हम सुनते हैं ना कि युधिष्ठिर महाराज को इस पूरी दुनिया में कोई बुरा इंसान मिला ही नहीं और दुर्योधन को इस पूरी दुनिया में कोई अच्छा इंसान दिखा ही नहीं। आप अगर देखो उसी तरह से भक्तचार्य महाराज की पूरी किताब में उनको हर एक प्रॉपर डिसाइपल के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको लगेगा वो बोलेंगे ये कितने अच्छे थे, इनमें इतना अच्छा गुण था, ये कितने अच्छे थे। अपनी कोई आप देखोगे नहीं कहीं एक पेज में भी उनकी कोई सेल्फ प्रेज, हालांकि वे खुद कितने महान थे जिन्होंने इतने कम टाइम में प्रभुपाद जी के इतने करीब आ गए और इतनी सेवा की, लेकिन वे हमेशा दूसरों में ही, तो वे खुद इतने गुणवान थे कि उनको दूसरों में सिर्फ गुण एकदर्शी, सबके गुण ही दिखाई देते थे। तो यहाँ पे वे बहुत प्रेज करते हैं जयपत गोस्वामी महाराज के बारे में। उसके बाद में लाइफ चली जा रही है, हैप्पी से खा रहे हैं पी रहे हैं। अब यहाँ पे भक्तचार्य महाराज एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, बोलते कि एक दिन मैं मायापुर के श्री राधा माधव विग्रह के सामने बैठा हुआ जप कर रहा था। जप तो मैं रोज ही करता था लेकिन आज कोई विशेष अनुभूति हुई मन में। मुझे ऐसा लगा जैसे कि राधा माधव वहाँ है, वहाँ एज ऑफ नाउ इमिडिएटली वहीं बैठे हुए हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे हरे कृष्ण जप को वे सुन रहे हैं और ये सही मोमेंट है। मैं कुछ भी मांगूंगा तो आज मेरी मांग पूरी हो जाएगी क्योंकि वो मेरी हर बात सुन रहे हैं, मेरा उनके साथ में एक रिश्ता बन गया है। तो तब महाराज बोलते हैं कि मुझे उस मोमेंट में लगा मैं क्या मांगूं, क्या मैं ऐसा मांगूं कि मुझे कोई बड़ी पोजीशन मिले, क्या मैं नेम फेम के लिए मांगूं, क्या मैं पैसा मांगूं, मैं क्या मांगूं, मैं कुछ भी मांगूंगा तो बस आज पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा इनके साथ कोई रिश्ता जुड़ गया है। और फिर महाराज ने सोचा नहीं नहीं मुझे तो ऐसा कुछ मांगूंगा जो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ आए, मुझे ऐसा कुछ नहीं मांगना है जो मृत्यु के बाद मुझसे छीन लिया जाए। पैसा पोजीशन नाम फेम वो तो चला जाएगा, मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। और फिर मैंने प्रणाम किया और भगवान से मांगा कि ठाकुर जी आप प्लीज़ मुझे हमेशा के लिए आपकी सेवा में नियुक्त करिए और मुझे कभी भी आपसे दूर मत करिए। बस मैंने ये मांगा, प्रणाम किया और मैं उस कमरे से निकल गया। तो ये बहुत सुंदर बात जो अपनी किताब में बताते हैं। उसके बाद एक घटना हुई, घटना ये हुई कि अनिर्देश बापू प्रभु जो पुजारी प्रभु कलकत्ता में जिन्होंने पहली बार महाराज को फ्रूट्स काटने के लिए कहा था, तो वे मायापुर आए और वे मायापुर आए और उसी दिन एक बहुत सुंदर बात हो गई। सब भक्त लोग जब ब्रेकफास्ट ले रहे थे तब मधुसेविता प्रभु ने अनाउंस किया प्रभुपाद इंडिया आ चुके हैं और महाराज इतने खुश जंप कर रहे हैं वो एकदम, अरे प्रभुपाद आ गए इंडिया आ गए। तो वो सीधे भागे भवानंद महाराज के पास, मैं जा रहा हूँ मुझे प्रभुपाद से मिलना है। तो मैं कहा तो प्रभुपाद बॉम्बे में, तो मैं निकलता हूँ बॉम्बे के लिए। तो बस वो बोलते जा रहे हैं, भवानंद महाराज ने कहा एक मिनट शांति रखो, तुम पहले शांत हो जाओ, सांस लो, क्या हुआ? नहीं प्रभुपाद आ गए तो मुझे जाना है बॉम्बे, मैं तो प्रभुपाद से मिलने के लिए तो आया था यहाँ पे। भवानंद महाराज ने बोला देखो तुम्हें बॉम्बे में कोई नहीं पहचानता, प्रभुपाद के आसपास भी तुम्हें आने नहीं देंगे, थोड़े दिन रुक जाओ, प्रभुपाद मायापुर आएंगे ना तब मैं प्रभुपाद के पास तुम्हें लेके जाऊंगा। सी 76 में तो इस्कॉन काफ़ी विस्तार हो गया था, हजारों भक्त थे, जीबीसी थे, टेंपल प्रेसिडेंट्स थे, प्रोपा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, प्रोपा जी के आसपास जस्ट अबाउट कोई जाने के लिए परमिशन नहीं थी। तो बोला तुम क्या करोगे वहां जाके, तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम नया भक्त हो, थोड़ा शांति रखो। महाराज मान गए, ठीक है हम इंतजार करेंगे। थोड़े दिन के बाद में फिर न्यूज आया कि प्रोपा जा रहे इलाहाबाद कुंभ मेला के लिए, और मायापुर से भी कुछ भक्त जाने वाले कुंभ मेला के लिए। भक्त चर महाराज फिर भागे भवानंद महाराज के पास में, पैर में पड़ गए, मैं जाऊंगा प्लीज, मैं जाऊंगा, मुझे भेजिए इलाहाबाद, मैं जाऊंगा। भवानंद महाराज बोला ठीक है शांति रखो, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पूरा ग्रुप का लिस्ट बनेगा, मैं देखता हूँ तुम्हारा नाम उसमें है कि नहीं। फाइनली डिसाइड हुआ ठीक है वो जाएंगे, उस लिस्ट में उनका नाम आ गया। लेकिन जस्ट वन डे बिफोर महाराज को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, तबीयत बहुत खराब। भवानंद महाराज ने बोला तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि उन दिनों में कुंभ मेला में हजारों लाखों लोग जाते थे, तो इसलिए एक वैक्सीनेशन लेना कंपलसरी था, कॉलेरा वैक्सीनेशन, क्योंकि कोई भी पानी पी लोगे तो डिजीज हो जाएगा। तो महाराज को वो वैक्सीनेशन दिया था कुंभ मेला जाने के लिए, लेकिन वो वैक्सीनेशन का एक उल्टा प्रभाव हो गया, तो पूरा फीवर आ गया पूरा। तो भवानंद महाराज ने बोला तुम नहीं जा सकते। अब उस फीवर की हालत में, बुखार की हालत में महाराज रोने लगे, ऐसा मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं दवा ले लूंगा, मुझे जाना ही है। और भवानंद महाराज ने उनकी सिंसियरिटी देख के बोली ठीक है बाबा, ठीक है चलो तुम आ जाओ। फाइनली महाराज बोलते मैं उस बस में बैठ गया, 30 जने थे उस बस में और हम सब बैठ गए और ऑन द वे टू इलाहाबाद। और बोलता इतना आनंद आया क्योंकि गुरु कृपा महाराज के जो 15 फॉलोअर्स थे, जो उनकी जो टीम थी वो भी थे उसमें, और हमने जोर जोर से कीर्तन किया और इतना आनंद करते 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 हम फाइनली इलाहाबाद पहुंच गए। जैसे ही इलाहाबाद पहुंच गए, जो टेंट हमें दिया गया था, महाराज बोलते मैंने वहां पे मेरी सामान फेंका और मैं भागा, प्रभुपाद जी का टेंट कहाँ है, मुझे प्रभुपाद जी को मिलना है, और मैं, किसने कहा वही है प्रभुपाद का टेंट, मैं भागा प्रभुपाद जी के पास। मैं जैसे भाग रहा हूँ देखा कि किसी ने मुझे रोक लिया, और जो जिसने मुझे रोका वो काफ़ी लंबा चौड़ा, मैं तो सिर्फ उसके छाती तक पहुंचा, और उसने मुझे बोला कहाँ कहाँ जा रहे हो, नहीं मैं प्रभुपाद को मिलेगा, क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है प्रभुपाद से, प्रभुपाद अभी किसी को नहीं मिलेंगे, शाम को आना, क्या है ऐसे घुस जाते हो, कौन हो तुम, कोई सेंस है तुमको, मुझे डांट के भेज दिया। महाराज बोला मैं नीचे मुंह करके जो है जा रहा हूँ कि मैं तो प्रभुपाद को नहीं मिल सकता। तभी देखा भवानंद महाराज आ रहे हैं, उनके हाथ में एक बास्केट है, बास्केट में बहुत सारी ताज़ा सब्जियाँ है जो हम मायापुर में उगाते हैं। और भवानंद महाराज ने मुझे देख के बोला कहाँ, तो नहीं मैं टेंट में जा रहा हूँ, मतलब कहाँ टेंट में, चलो मेरे साथ प्रभुपाद को मिलने चलते हैं। महाराज बहुत खुश, अच्छा मुझे आप ले जाएंगे प्रभुपाद जी, हाँ चलो चलो मेरे साथ प्रभुपाद जी को मिलने जाना है। महाराज बोलते मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई, मैं सच में जा रहा हूँ प्रभुपाद जी को मिलने, मैं पहली बार देखूंगा जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिनकी मैं फोटो देख चुका हूँ लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, आज मैं उनको मुखामुखी देखूंगा। तो वे खूब खुश। लेकिन क्या हुआ, जैसे टेंट काफ़ी बड़ा है, प्रभुपाद जी एकदम अंदर में बैठे हुए हैं, छोटा सा लाइट जल रहा है, प्रभुपाद जी का सैफ्रन कलर क्लॉथ दिख रहा है, तो महाराज भवानंद महाराज के साथ में अंदर में गए। लेकिन प्रभुपाद का मुख भी नहीं दिखा है, सिर्फ उनका वो भगवा कपड़ा जो है सैफरन दिखा है, उसमें ही उनकी हार्ट बीट रुक गई, वो वहीं के वहीं जो है दंडवत प्रणाम करने लगे, इतना खुश, आंख में से आंसू निकल रहे हैं कि मैं उनको देख रहा हूँ। जब उन्हें प्रणाम करके उठे ऊपर में, तब देखा वहाँ पे एक लंबा सा भक्त खड़ा था, बोला कहाँ निकलो बाहर, नहीं मैं वो, तब देखा कि भवानंद महाराज ऑलरेडी वो बास्केट लेके अंदर चले गए थे, ये प्रणाम करने में रह गए। तब महाराज ने सोचा मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, अगर अंदर जाके प्रणाम कर लेता, मैं इतना प्रणाम करने के लिए उत्सुक था कि मैं प्रणाम करता हुआ रह गया, महाराज चले गए, ये लोग तो मुझे पहचानते नहीं है, ये लोग बोले ये कहाँ से चला आ रहा है, कौन है, तुमको कभी देखा नहीं, चलो 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 बाहर निकलो, तो मुझे बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, शाम को मैं जो है प्रभुपाद जी का दर्शन करूंगा। अब पूरा दिन करने के लिए क्या है कुंभ मेला में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मायापुर में भी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन मायापुर में क्या बंगाली बुक किताब, तब एक ही किताब थी गीतार ज्ञान, तो कोई चॉइस नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब वो एक ही बंगाली किताब डिस्ट्रीब्यूट करना है गीतार ज्ञान, और कोई चॉइस नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश में है, हिंदी में है, बहुत सारी किताबें, तो महाराज बोले बहुत मज़ा आ रहा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में। और वहाँ पे जो यात्री आए थे कुंभ मेला में स्नान करने के लिए, वे गरीब थे लेकिन सारी किताब खरीद रहे थे, तो बोले पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहा, इतना आनंद आ रहा था कि मैं भूल ही गया कि शाम को जो है प्रभुपाद जी का दर्शन करना है। तो सडनली जब मुझे याद आया, मैंने देखा अरे अरे टाइम हो गया, मुझे तो जाना है प्रभुपा जी का दर्शन करने के लिए। मैं साथ में जो भी मेरे हाथ में बाकी किताब बच गई थी, मैं भागा प्रभुपा जी के टेंट में। और जब मैंने गया शाम को, मैंने क्या देखा, ऑलरेडी वहाँ पे हजारों भक्त बैठे हुए थे। मुझे लास्ट में कहीं पे जो है जगह मिली, लास्ट रो में, जहाँ पे दूर से प्रभुपाद को देख सकते, क्योंकि मैंने तो पहले सोचा था कि मैं पहला चला जाऊँगा, फर्स्ट रो में बैठूंगा, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी हो गए। तो फाइनली बोलते हैं कि मैं लास्ट रो में बैठा था, लेकिन महाराज बताते अपनी फीलिंग्स कि मैं, मेरा हृदय इतना जोर जोर से धड़क 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 कर रहा था, शरीर पूरा सा हिल रहा था, एकदम स्वेटिंग आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसे अलग अलग टाइप के भाव हो रहे थे जब मैं प्रभुपाद जी को देख रहा था, और मेरी दिल की धड़कन इतनी जोर से हो रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पास में जो बैठा है शायद उसको भी आवाज़ आ रही होगी, और एक मिनट के लिए मुझे लगा शायद मेरे दिल की धड़कन टूट के मेरा जो हृदय है वो छाती से बाहर गिर ना जाए, उतना जबरदस्त। और प्रभुपाद क्या बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरी धड़कन इतनी जोर से बज रही है, और प्रभुपाद दिखाई भी नहीं दे रहे क्योंकि आंख में से आंसू गिर रहे, आंसू गिर रहे, आंसू गिर रहे, तो आंसू की वजह से वो क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहे, सुनाई भी नहीं दे रहे, बट फिर भी मैं बस उधर ही बैठा हुआ था। तो वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं कैसा फील कर रहा था उस मोमेंट में, महाराज बताते हैं। फाइनली महाराज बोलते हैं कि बहुत सुंदर परिवेश था, और वहाँ पे एक आदमी प्रभुपाद जी को हिंदी में प्रश्न कह रहा था, स्वामी जी आप क्यों इतने सारे नए नए मंदिर बना रहे हैं, पहले ही भारत में बहुत सारे मंदिर टूटे फूटे पुराने पड़े हुए, उनको ही रिपेयर क्यों नहीं कर लेते, नए मंदिर क्यों बना रहे हैं। और महाराज बोलते कि प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर जवाब दिया, प्रभुपाद जी ने उन्हें डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारे पास में वो महिला बैठी है वो कौन है। उस आदमी ने कहा ये मेरी पत्नी है। प्रभुपाद ने कहा तुमने शादी क्यों की। इसको जवाब समझ में नहीं आया शादी क्यों की। फिर प्रभुपाद ने बोला मैं बताता हूँ, तुमने शादी इसीलिए की क्योंकि तुम्हें बच्चे चाहिए। इंसान शादी क्यों करता है, क्योंकि वो अपना बच्चा चाहता है। तो तुम अपना बच्चा क्यों चाहते हो, रास्ते में कितने सारे बच्चे पड़े हुए अनाथ है उनको ले लो, लेकिन तुम्हें अपना बच्चा चाहिए ना, तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। तो उसी तरह से बहुत सारे मंदिर यहाँ पे टूटे फूटे हैं जिसको रिपेयर कर सकते, लेकिन मुझे अपना मंदिर चाहिए, मैं अपनी तरह से भगवान की सेवा में जो है ये करना चाह रहा हूँ, अपनी सेवा भगवान को देना चाह रहा हूँ, मैं भी एक मंदिर बनाना चाह रहा हूँ। तो सब निशब्द हो गए। फिर वहाँ पे कोई भारत सेवाश्रम संघ बोल के कुछ बंगाली लोग आए थे उस नाम से, वो भी प्रभुपाद जी को चैलेंज करने लगे, आप लोग जो है हरे कृष्ण हरे राम करते हो ठीक है, लेकिन लोग भूकंप से, जो है अकाल से, महामारी से कितने लोग मर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। वे प्रभुपाद जी को चैलेंज करने लगे, और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया कि एक्चुअल वेलफेयर इज कि सबको अपने पिता से मिलाना, ये भूले भटके लोग, हम शायद आज उनको प्रसाद दे दे, खाना दे दे, कपड़े दे दे, लेकिन कल फिर भूख लगेगी। मूल कारण है कि जीव भगवान को भूल चुका है, जब भगवान को वो पुनः याद करने लगेगा, भगवान से वो जुड़ जाएगा, तो सारे दुख का जो है अंत आएगा। तो ये बहुत सारी फिलोसॉफिकल बात हुई। तो फिर वो प्रभुपाद जी को बोलने लगे मैंने आपको बंगाली में प्रश्न पूछा, आपने हिंदी में क्यों जवाब दिया। प्रभुपाद बोलते अरे हिंदी या बंगाली तुमको जवाब समझ में आया ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराज यहाँ पे बोलते भक्तचर महाराज कि मैंने सोचा ये आदमी जो आज प्रभुपाद को ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रभुपाद ने जिस तरह से उसको जवाब दिया, मुझे लगता नहीं वो कभी भी लाइफ में कोई इस्कॉन डिवोटी को कोई प्रश्न पूछने के लायक बचा है, या कभी भी कोई इस्कॉन मंदिर जाएगा उसका अच्छा खासा जो है अपमान हुआ है, या तो उसकी अच्छा खासा क्या बोलते हैं ना, बिकॉज वो ईगोइस्टिकली पूछ रहा था ना, तो उसको सटीक जवाब मिल गया है। तो भक्तचर महाराज बोलते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था उन दिनों में कि शायद वो कभी और इस्कॉन ना आए, लेकिन मुझे शुद्ध भक्त की पावर के बारे में पता नहीं था। बहुत सालों के बाद में मैंने उसको मायापुर में देखा, वो भक्त बन गया, वो ऑलरेडी डिवोटी बन गया था। तो तब मुझे लगा अरे बाप रे, एक शुद्ध भक्त के साथ किसी भी रूप में कोई संपर्क में आएगा तो कभी ना कभी आगे चल के वो भक्त जरूर बनेगा। तो महाराज की बहुत सुंदर ये रियलाइजेशन है कि बस कोई भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो वे भक्त बन जाते हैं। उसके बाद में अब कुंभ मेला में बहुत सारे भक्त आए थे, करीबन 300 भक्त अलग अलग देशों से आए थे, और वहाँ पे गिरिराज महाराज आए थे। और एक दिन भक्तचर महाराज बोलते हैं कि मैं ब्रश कर रहा था, और एक ब्रह्मचारी मेरे साथ पास खड़ा था, बहुत सुंदर स्वीट सा मुझे स्माइल दे रहा था, तो मुझे पता नहीं था वो कौन है, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे लगे। बाद में मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें पता नहीं है वो कौन है, वो गिरिराज महाराज है, गिरिराज दास है, गिरिराज दास ब्रह्मचारी। तो इन्होंने कहा कौन है गिरिराज दास, तो बोलता अरे वो बॉम्बे के प्रेसिडेंट है, चिकागो में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे, उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, वो ब्रांडिस यूनिवर्सिटी में जो है वे पढ़ाई करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपना मिलियन डॉलर्स की जो आस्ती है अपने पिताजी की सब कुछ छोड़ दिया वो प्रभुपाद जी के लिए बॉम्बे मंदिर में अभी कितना कष्ट कर रहे हैं वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए वो प्रभुपाद जी काफ़ी प्रिय है। तो महाराज बोलते मुझे इतना अच्छा लगा कि अच्छा प्रभुपाद जी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना घर बाहर पिता अपना फ्लरिशिंग कैरियर सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी की सेवा में लग गए तो मुझे इतना उन पर रेस्पेक्ट बढ़ गया। और फिर वे बताते हैं कि उस दिन सुबह मंगलारती हो गई चांटिंग हो गया दर्शनार्थी हो गया हम सब गुरु पूजा के लिए प्रभुपाद जी के टेंट में गए। तो जब प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही है तो एक भक्त गाने लगा भज हरे कृष्णा भज हरे राम। तो प्रभुपाद जी इतने गुस्से हो गए वे सडनली जोर से चिल्लाए बंद करो कीर्तन। तो हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर प्रभुपाद ने बोला किसने सिखाया तुमको ये भज हरे कृष्णा ये कहाँ से तुम सीखे हरे कृष्ण महामंत्र के पहले तुम भज क्यों लगा रहे हो। फिर वो डिवोटी नीचे मुख करने लगा। फिर प्रभुपाद ने बोला प्लीज ये सब नई नई चीजें ऐड मत करो मैंने तो तुमको नहीं सिखाया भजा हरे कृष्णा सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बस काफी है नई नई चीजें ऐड मत करो। उसके बाद में सब सीधे हो गए सब फ्रीज हो गए थे कि प्रभुपाद जी इतना कभी ऐसा सुना नहीं था प्रभुपाद जी से इतना गुस्सा दिखाया प्रभुपाद जी ने। एक दिन प्रभुपाद जी ने बोला कि मुझे जो है त्रिवेणी में स्नान करना है जी। उन दिनों में वो कुंभ मेला का हम सब जानते हैं ना एक समय होता है शाही स्नान एक कोई मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में अगर स्नान करते हैं तो उस मुहूर्त में वो गंगा यमुना सरस्वती जो है पूरी अमृत में बदल जाती है तो उस टाइम पे स्नान करना का बहुत महत्व होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते लेकिन अब बूढ़े हो चुके थे शरीर भी खराब था और कुंभ मेला में क्राउड ज़्यादा होता है तो प्रभुपाद जी बोलते कि मैं तो नहीं जा पाऊँगा चल के। उनके शिष्यों को बोलते कि तुम लोग जाके उस समय पे जो है पानी लेके आ जाओ बकेट में। फिर भक्त लोग जाते हैं और पानी लेके आते हैं और प्रभुपाद जी को देते हैं और फिर प्रभुपाद जी उस पानी से जो है वह स्नान करते हैं। तो उस तरह से बहुत सुंदर से कुंभ मेला में आनंद से प्रभुपाद जी का एसोसिएशन हर रोज शाम को मिल रहा है महाराज बहुत खुश है। अब एक दिन सडनली जो है प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हो रही थी और प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि बस अब मैं चलूंगा क्योंकि इसी प्रभुपाद जी का मेन काम था श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेशन। लेकिन कुंभ मेला में इतने ज़्यादा यात्री थे कि रात को भी शोर गुल होता था शांति से ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे और प्रभुपाद जी के मन में हमेशा ये बात थी कि मेरे पास समय बहुत कम है तो मुझे जो है मेरा ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट करना है। तो भवानंद महाराज ने आके बक्सर महाराज से कहा कि तुम्हें पता है खबर मिली। क्या खबर? वही प्रभुपाद जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा हाँ पता है महाराज प्रभुपाद जी जा रहे हैं। फिर भवानंद महाराज ने कहा लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि प्रभुपाद जी के साथ तुम भी जा रहे हो? तो मैं कहाँ जा रहा हूँ प्रभुपाद जी के साथ? बोलता अच्छा तो तुम्हें ये खबर पता नहीं है प्रभुपाद जी के साथ कुछ लोग चुने गए हैं जो प्रभुपाद जी के साथ ट्रैवल करेंगे और तुम्हें भी चुना गया है और तुम उस टीम में जाने वाले हो। महाराज कहते मैं स्तब्ध हो गया मैं तो एक नया भक्त मेरी दीक्षा भी नहीं हुई मैं कुछ भी नहीं जानता मैं जाऊँगा। बोला हाँ तुम जाओगे। महाराज बहुत ही खुश और वो रेडी हो गए ठीक है। अब सब तैयार हो गए स्टेशन पहुंच गए रेलवे स्टेशन हजारों भक्त वहाँ पे प्रभुपाद जी को फेयरवेल गुड बाय करने के लिए आए थे और सब रो रहे हैं ना प्रभुपाद जी चले जाएंगे तो सबके आंख में आंसू है। और महाराज बोल रहे थे कि महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि एक पूरा कोच जो है प्रभुपाद जी और उनके एंटोरेज के लिए बुक किया था वो बहुत अच्छा लग रहा था एवरीबडी डिवोटी इनसाइड पूरा कोच प्रभुपाद जी का। तो महाराज बोलते हैं कि मैं जब वो कोच के गेट के पास खड़ा था और जब ट्रेन चलना शुरू हो गई और सारे भक्त जो है ऐसा कर रहे हैं तब मैं मेरे मन में सोच रहा हूँ कि वाओ आई एम नॉट ऑन दिस साइड आई एम ऑन दिस साइड कितनी अच्छी मेरी कितनी भाग्य है कि मैं इस साइड पे नहीं हूँ मैं इस साइड में हूँ ये लोग बेचारे पर मैं तो प्रभुपाद जी के साथ जा रहा हूँ। क्या है क्या ये सच है मैं सच में उनके साथ जा रहा हूँ? बहुत खुश। दूसरे दिन नहा धो के ट्रेन में भी जो नहाना धोना जो बाथरूम होता है नहा धो के महाराज बोलते मैं जप कर रहा था जहाँ पे उनको सीट दिए गए था और भवानंद महाराज महाराज के पास में आए और बोला कि चलो तुमको प्रभुपाद से मिलाने के लिए। तो महाराज ने बोला क्या मुझे प्रभुपाद से मिलने के लिए? हाँ चलो चलो तुम ही तो बोलते हो प्रभुपाद से मिलना है आज मैं बोल रहा हूँ चलो मिलने के लिए। अब महाराज बोलते हैं अपनी किताब में कि मैं मेरे मन में सोच रहा हूँ मुझ में तो इतने सारे अवगुण है इतने सारे खराब विचार है मैं तो इतना पापी हूँ प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है और जब प्रभुपाद मुझे देखेंगे ना तो वो तो पूरा एक्सरे के जैसे मुझ में सारे खराब गुण को देख लेंगे और फिर शायद प्रभुपद बोलेंगे इस पापी को मेरे सामने क्यों लेके आए, निकालो इसको बाहर, मैं इसको कभी दीक्षा नहीं दूंगा, ये मेरे साथ कैसे आ गया। शायद प्रभुपद मुझे जिंदगी भर के लिए रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए मैं एक काम करता हूँ ना, मैं प्रभुपद के सामने जाऊँगा ही नहीं, मैं कभी भी उनको दूर से ही देखूंगा, पास जाऊँगा तो उनको पता चलेगा ना मैं कैसा हूँ। ये सारे विचार उनके माइंड में चल रहे हैं और वो बोल रहे नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। भवानंद महाराज उसको उनको हाथ से पकड़ के, चलो मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, चलो, सबको ऐसा ही होता है जब पहली बार प्रभुपाद को मिलते, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ, और उनको खींच के लेके गए। जब प्रभुपाद जी के कंपार्टमेंट के अंदर में महाराज घुसे, उन्होंने देखा ऑलरेडी वहाँ पे जयपताका महाराज बैठे हुए थे और रामेश्वर महाराज बैठे हुए थे और अभिराम प्रभु जो कलकत्ता के प्रेसिडेंट थे वो नीचे बैठे हुए थे और बाकी सब जो है प्रभुपाद जी इस ओर बैठे थे और सामने जयपताका महाराज बैठ गए, रामेश्वर महाराज थे और भवानंद महाराज भी जाके बैठ गए। मैंने सोचा मैं भी नीचे बैठूंगा, तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि नहीं तुम मेरे पास बैठो। महाराज बोलते मैं आपके पास नहीं बैठ सकता। अरे बैठो। अब प्रभुपाद जी जहाँ बैठे थे तो सीट पर ब्लैंकेट डाला हुआ था, ब्लैंकेट के ऊपर प्रभुपाद जी बैठे थे, तो भक्तचर महाराज कहते कि मैंने उस ब्लैंकेट को थोड़ा सा फोल्ड करके कोना में बैठ गया मैम, और फिर प्रभुपाद मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वे दूसरों से बात कर रहे थे। वे क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा तो पूरा शरीर जो है कांप रहा है, बस मैं उनके तरफ देख रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं कुछ मुझे पता नहीं है। सडनली प्रभुपाद मेरे तरफ देख के बोले कि तुम मेरे सारी किताबों को बंगाली में ट्रांसलेट करो, ठीक है। अब महाराज बोलते मैं बंगाली में ट्रांसलेट करूँगा, खुद ही अभी नया नया आया हूँ इस्कॉन में, मुझे तो कुछ। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं तुम कर सकते हो। उसने कहा प्रभुपाद जी मैं शायद ठीक से ना कर पाऊँ। प्रभुपाद ने कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है तुम्हें करना है, तो बोले ठीक है। उसके बाद में जब प्रणाम करके वहाँ से प्रभुपाद जी का जो कोच था उसमें से जब बाहर निकले तो महाराज बोलते कि मैं हर वक्त अपने आप को पिंच कर रहा था, सपना तो नहीं है, कहीं सपना तो नहीं है, बार बार, और भवानंद महाराज मुझे मेरे तरफ देख के हंस रहे हैं, ये सपना नहीं है, तुम सच में प्रभुपाद से मिले हो और प्रभुपाद जी ने तुम्हें ट्रांसलेशन की सेवा दी है। फाइनली वे कलकत्ता मंदिर पहुंच गए और प्रभुपाद जी ने वहाँ पे जो विग्रह थे राधा गोविंद के विग्रह उसको देख के प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रेस किया, किसने किया है डेकोरेशन, बहुत सुंदर लग रहा है विग्रह। तो वहाँ के जो पुजारी थे पूर्ण प्रज्ञ प्रभु, उन्होंने कहा मेरे वाइफ ने किया है नारायणी देवीदासी, और प्रभुपाद फिर बहुत खुश होकर गाने लगे जो हमारा गुरु अष्टकम का है ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर जान दो, बस ये गाने लगे प्रभुपाद जी बहुत खुश, कितना सुंदर तुम लोग राधा गोविंद की सेवा कर रहे हो। उसके बाद में भक्तचारु महाराज बोलते हैं कि कलकत्ता में लाइफ बहुत बिजी थी क्योंकि प्रभुपाद जी इतने लोगों को वहाँ पे जानते थे, सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग प्रभुपाद से मिलने के लिए आते थे, प्रभुपाद बहुत बिजी रहने लगे और कुछ कुछ रिपोर्टर्स आते थे और प्रभुपाद जी को बहुत प्रेज करते थे, आप कितना अच्छा कर रहे काम कर रहे हो, और प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मेरे गुरु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की मर्सी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग क्या करते थे, जब महाराज बोलते हैं कि जब प्रभुपाद से लोग मिलने आते थे ना तो हम भी ऐसे ही पीछे बैठे रहते थे क्योंकि हमें क्या, हमें तो सिर्फ प्रभुपाद को देखना है, उनकी बातें सुननी है, वो किससे कैसे बात कर रहे देखने में अच्छा लगता था। एक दिन प्रभुपाद ने बोला शाम हो गई है तुम लोग सब जाओ आरती में, और प्रभुपाद कंटिन्यू कर रहे हैं लोगों से मिलने के लिए। तो मतलब मैं भी निकल गया रूम से बाहर, लेकिन फिर मुझे सडनली माइंड में विचार आया आरती तो रोज अटेंड कर सकते हैं, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन तो नहीं मिलेगा। मैं फिर से टर्न हुआ और मैंने प्रभुपाद जी का कमरा खोला, प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली देखा कौन है क्या चाहिए तुमको, तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके बोला कुछ नहीं मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ आपको देखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है आ जाओ अंदर, महाराज बोलते मैं आ गया अंदर और बैठ गया। फिर प्रभुपाद ने पूछा क्या चाहिए तुमको, और महाराज बोलते बस पता नहीं अनायास मेरे मुँह से निकल गया, मैं इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था, मैंने बोल दिया मुझे दीक्षा चाहिए आपसे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे, मैंने पूछ लिया बस, पता नहीं कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। और प्रभुपाद जी ने स्माइल करते हुए कहा क्यों नहीं ज़रूर दीक्षा दूंगा, अभी दूंगा गौर पूर्णिमा में मायापुर में तुम्हारी दीक्षा होगी। महाराज बोलते मैं इतना खुश हो गया, बस मैं प्रणाम किया प्रभुपाद जी को और वहाँ से भागा, इतना खुश कि मेरी दीक्षा होगी मायापुर में। अब मायापुर का प्रसंग शुरू होता है। महाराज बोलते हैं हम मायापुर पहुंच गए प्रोपा जी के एंटोरेज में। प्रोपा जी एक मरून कलर की एम्बेसडर में मायापुर पहुंचे और महाराज अपनी मेमोरी से बताते हैं कि वो मरून कलर की जो एम्बेसडर थी उस पे स्टील से एक वैष्णव का वैष्णव तिलक बनाया हुआ था और भक्त लोग इतने आनंद में इस साइड उस साइड पंक्तियां बना के खड़े हुए थे और कीर्तन कर रहे थे जोर जोर से। जैसे प्रभुपाद की गाड़ी निकली आई वहां पे पहुंची, प्रभुपाद जी एम्बेसडर का दरवाजा खोल के बाहर निकले, भक्त लोग रो रहे हैं, बस रो रहे हैं रो रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और मैं भी इतना खुश उनके साथ में कीर्तन में लग गया, बहुत आनंद आ रहा था। फाइनली हम लोग सब मायापुर पहुंच गए, प्रभुपाद जी ने राधा माधव का दर्शन किया, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। एक चैतन्य महाप्रभु की विग्रह भी थे जो 1972 में प्रभुपाद ने स्थापना की थी। प्रभुपाद जी ने 3 बार परिक्रमा लगाई, मंदिर में क्लास दिया, सब कुछ बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर लग रहा था। और काफ़ी कुछ डिटेल्स है, हम थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं। महाराज यहाँ पे बताते हैं कि इतना सुंदर विविडली बताते हैं कि क्लास में क्या बोला, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। जस्ट सी महाराज मेमोरी उनके गुरु के बारे में, उनके गुरु श्रील प्रभुपाद के हर एक बात को इतनी अच्छे तरीके से महाराज बताते हैं। वो लेम मैन और ब्लाइंड मैन के बारे में प्रभुपाद बता रहे थे, कैसे अमेरिका का पैसा भारत के स्पिरिचुअल वैल्यूज अगर दोनों मिल जाए तो कितना कुछ हो सकता है। तो वो महाराज बोलते बहुत सुंदर लग रहा था। रोज प्रभुपाद नीचे आते, विग्रह की 3 बार परिक्रमा करते, क्लास देते। एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे था, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया। और प्रभुपाद ने इस क्लास में एक बात क्लैरिफाई भी की, क्योंकि बहुत बार प्रभुपाद जी के गुरु भाई उनको क्रिटिसाइज करते थे कि जब वे पहली बार मायापुर में जमीन देखने आए थे, जब अमेरिका से आए थे जमीन खरीदने के लिए, तब उनकी गाड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि के पास में नहीं रुकी थी, वो बिना प्रणाम किए चले गए। तो ये क्या है, गुरु को प्रणाम किए बिना चले गए वो मायापुर में जमीन देखने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई किए कि मेरे गुरु मुझसे अलग हुए ही नहीं है कि मुझे उतर के उनको प्रणाम करना पड़े, वो तो मेरे हृदय में है। मैं तो उनकी वाणी, उनके वचन, उनके दिव्य संदेशों को मेरे हृदय में जहाँ जाता हूँ वहाँ कैरी करता हूँ, वो तो मुझसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी सुंदर बातें ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। और भक्ति चारू महाराज बताते थे कि क्योंकि मेरी सेवा थी बंगाली में बुक ट्रांसलेशन करने के लिए, तो मेरा एक उसमें मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि मैं जब ही चाहूँ प्रभुपाद के कमरे में अंदर जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं बोलूँगा डाउट है, पूछना है, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत आनंद आता था, मैं जब ही चाहूँ उनको मिल सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ। एक दिन मैं गया प्रिंटर्स के पास कलकत्ता, और मैं जब कलकत्ता के प्रिंटर्स से जब वापस आया तो मुझे किसी भक्त ने बोला कि प्रभुपाद तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो महाराज बोला मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई, अच्छा प्रभुपाद मेरे बारे में पूछ रहे थे, मतलब प्रभुपाद ने उसका मतलब नोटिस किया कि मैं नहीं हूँ मंदिर में। तो वो सीधा भागे प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी आप मुझे याद कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ कहाँ गए थे तुम। मैं कलकत्ता गया था। क्यों गए थे? एक्चुअली महाराज बताना नहीं चाह रहे क्यों गए, वो प्रभुपाद जी को सरप्राइज देना चाह रहे थे, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की किताब बना रहे थे ना, जो जो प्रभुपाद जी ने आर्टिकल्स लिखे थे वे बाइंड करके प्रभुपाद को गिफ्ट देना चाह रहे थे, तो बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने बोला क्यों गए थे तुम कलकत्ता, तो उन्होंने बता दिया कि प्रभुपाद एक्चुअली मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखे ना मैं उसको बाइंड करके एक किताब बना रहा हूँ। प्रभुपाद जी इतने खुश हुए और फिर बोले प्रभुपाद जी मैं आपको पहले ही ये गिफ्ट देना चाह रहा था, लेकिन कलकत्ता में प्रिंटर्स इतना तंग कर रहे हैं, बार बार काम को डिले कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ इंडिया में सब कुछ ऐसा ही होता है, बहुत डिले हो जाती है हर चीज़, कोई बात नहीं। मैं प्रभुपाद जी काफ़ी प्रसन्न हुए कि तुम जो है ये मेरी किताब जो है बना रहे हो। और फिर प्रभुपाद बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और उनको बताने लगे। भक्तचार्य महाराज बोलते हैं अपनी किताब में कि मैंने सोचा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रभुपाद और मैं अकेले हैं, एक बात मुझे जो मन में खाई जा रही है पूछ लेता हूँ। तो भक्तचार्य महाराज प्रभुपाद को पूछते, प्रभुपाद क्या अगर कोई अपने टंग को कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या उसे कृष्ण नहीं मिलेगा? तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल। वो महाप्रसाद गोविंदे में हम गाते हैं ना, कृष्ण बड़ो दया मोय तोरी बारे जिभा जॉय स्व प्रसाद अन्न दिलो बाय से अनामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। कितना आसान है अपनी जिभा को कंट्रोल करने में, भगवान कृष्ण का प्रसाद खाओ तुम्हारी जिभा कंट्रोल हो जाएगी। फिर भक्तचारु महाराज बोलते मैंने मेरा सिर नीचे किया और बोला प्रभुपाद एक्चुअली मैं जब कलकत्ता जाता हूँ ना तो मैं स्वीट शॉप में खाता हूँ, वो मिठाई खाता हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो मिठाई, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, मिठाई खा सकते हो। तो महाराज बोलते मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बाहर आके ना सबको बताने लगा। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, खा सकते हैं, मिठाई शॉप में मिठाई खाने में कोई बात नहीं है। तो फिर कुछ सीनियर भक्तों ने मुझे बोला कि ठीक है, तुमको प्रभुपाद ने ये एडवाइस दिया, ठीक है, सबको जाके बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम गलत एडवांटेज मत लो इस चीज़ का। वो ठीक है, तुम प्रिंटर के पास गए खाने के लिए, कुछ नहीं है तो तुमने खा लिया, बट इसको आदत मत बनाओ, हमें कृष्ण प्रसाद खाना है, इसको आदत मत बनाओ। अब भक्तचार्य महाराज बोलते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, प्रभुपाद जी ने मुझे बुलाया और मेरे हाथ में बहुत सारे पेपर दे दिए। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये सारे बंगाली लेटर्स है, और एक काम करो, मैं तुमको डिक्टेशन देता हूँ, तुम ये सारे बंगाली लेटर्स का जवाब दो। महाराज बहुत खुश हो गए, वाओ, और एक सेवा मिल गई मुझे प्रभुपाद जी के पास रहने की। तो अब क्या करने लगे महाराज, वो बंगाली लेटर्स पढ़ते थे, प्रभुपाद उसका जवाब देते थे। उन दिनों में तो बंगाली टाइपिंग नहीं होता था, तो महाराज खुद अपने हाथों से लिखते थे, पहले ड्राफ्ट बनाते थे, फिर से पढ़ते थे, प्रभुपाद जी उसको चेक करते थे, उसके बाद जब अप्रूव हो जाता था फिर प्रभुपाद जी के लेटर हेड में लिखते थे, फिर प्रभुपाद जी का साइन लेते थे। तो ये अब महाराज की जो है सेवा हो गई। तो ये बहुत खुश थे, बिजी थे। एक दिन प्रभुपाद जी ने पूछा क्या तुम हिंदी भी लिख सकते हो? महाराज ने कहा लिख तो सकता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी की हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हिंदी की हैंडराइटिंग तो किसी की भी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, जैसी हैंडराइटिंग है वैसी ही लिखो। और फिर प्रभुपाद जी ने एक जोक बताया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की हिंदी की हैंडराइटिंग इतनी बेकार थी कि जब वो अपने मित्र को चिट्ठी लिखता तो उसके मित्र ने जवाब में लिखा कि तुम्हारी चिट्ठी के साथ तुम कुछ पैसे भी भेज दिया करो, सो दैट मैं उस पैसे से टिकट खरीद के तुम्हारे पास आके तुम्हारे लेटर का अनुवाद करवा के फिर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लेटर सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी खराब है। तो प्रभुपाद जी ने जो ऐसे जोक कर रहे थे तो महाराज और प्रभुपाद जी दोनों हंसे। तो अब यहाँ से महाराज बोलते कि एक सुंदर जीवन का आरंभ हो गया, क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ में एक पर्सनल एसोसिएशन, उनके साथ बातें, उनके साथ जोक्स, हंसना उनके, क्योंकि सेवा करेंगे तो पास आ सकते हो गुरु के, सेवा में बिजी हो गए। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं और प्रभुपाद बात कर रहे थे और बीच में हरिसौरी प्रभु आ गए। हरिसौरी प्रभु जो है वे प्रभुपाद जी को मसाज देते थे, पर प्रभुपाद जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। अब एक्चुअली सिस्टम तो ये है कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, मेरा काम हो गया है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा पेपर लेके ऐसा कुछ कुछ तो लिख रहा हूँ, सो दैट मुझे कमरे से बाहर नहीं जाना है, मैं जितना हो सके उसी कमरे में रहना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद का जब मसाज हो रहा है, मैं बस वहीं बैठा हुआ हूँ, तो प्रभुपाद जी ने मेरे तरफ देख के मेरे आँखों में आँख डाल के कहा, तो ये बहुत सुंदर इम्पोर्टेंट बात, तो प्रभुपाद जी बोलते उनकी आँखों में आँख डाल के प्रभुपाद जी ने कहा तुमने बहुत जन्म माया के लिए दिए है, ये एक जन्म कृष्ण के लिए दे दो। और महाराज बोलते मैं बस स्तब्ध रह गया, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी तरफ देख के बोल रहे हैं कि बहुत जन्म तुमने माया के लिए दिए है, बस ये एक जन्म कृष्ण के लिए दे दो। और बस प्रभुपाद बस बोलते रहे और फिर एट इन डिटेल्स प्रभुपाद बताते रहे कि जो है मतलब स्त्री के संग में मत रहो, और ये जो भौतिक जगत है एक मैथुनाग्रह है, इससे कोई लाभ नहीं है, जिस तरह से एक ऊँट होता है वो कांटे खाता है और कांटे खाने के वजह से जीभ में से रक्त निकलता है, तो वो सोचता है कि कांटे कितने स्वादिष्ट है ना, कितना मीठा मीठा रस निकला, लेकिन वो रस कांटों से नहीं निकला है, अपनी जबान अपने जिभा से निकला है। उसी तरह से हम सोचते हैं इस भौतिक जगत में सुख है, लेकिन इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। तो उस तरह से बस वे कहते रहे, और लास्ट में प्रभुपाद ने फिर से महाराज की तरफ देखा और कहा तुम्हारा इस एक जीवन तुम कृष्ण को दे दो, और अगर कुछ नहीं भी हुआ, समझो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा ये जीवन, लेकिन ऐसे तो तुमने बहुत सारे जीवन वेस्ट कर चुके हो ना ऑलरेडी, तो और एक जीवन वेस्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे बहुत बार प्रभुपाद बहुत लोगों को बोलते थे, जैसे कभी कभी कोई प्रभुपाद को बोलता है कि प्रभुपाद हमें जन्म के बाद में अगर पता चला कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ? तो प्रभुपाद बोलते थे कोई बात नहीं, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ मरने के बाद तुम्हें पता चला कि कृष्ण जैसा कुछ है तो क्या होगा? इसलिए कम तुमको हम कुछ ऑस्टेरिटी करने के लिए तो नहीं बोल रहे ना, बस प्रसाद खाओ जप करो, पवित्र जीवन जियो, इसमें गलत क्या है। तो बस यहाँ भी भक्तिचार्य महाराज को प्रभुपाद यही बात बोल रहे कि एक जन्म कृष्ण को देख के देखो, अगर तुम्हारा कुछ नहीं भी बना तो भी क्या है, तुम ऑलरेडी इतने लाइफ तो वेस्ट कर चुके हो, और एक लाइफ बस भगवान के लिए तुम दे दो। और भक्तिचार्य महाराज बोलते कि जब मैंने ये बात प्रभुपाद से मुखामुखी सुनी, मैं प्रभुपाद को प्रणाम करके निकल गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने मन में बोला, हाँ प्रभुपाद, हाँ ये जीवन मैं आपको अंकित करता हूँ। भक्तिचार्य महाराज यहाँ पे कहते कि मुझे पता नहीं कृष्ण कौन है, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, प्रभुपाद अपने मन में बोल रहे, प्रभुपाद से नहीं बोल रहे, कि मेरा ये जीवन आपको अंकित है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये मेरे जीवन की परिपूर्णता है, आपकी सेवा करना बस। और ऐसा कह के वे निकल गए कमरे से। अब ऐसे हो गया, यहाँ पे एक दिन भवानंद महाराज के साथ में जो है भक्तिचार्य महाराज वॉकिंग कर रहे थे मायापुर में, और सडनली उन्होंने देखा कि एक पर्सन आ रहे, एक भक्त आ रहे हैं जो बहुत तेजस्वी है, देखने में बहुत सुंदर है, और भवानंद महाराज उनको देख के बहुत प्रसन्न है और जाके उनको आलिंगन कर रहे हैं। तो ये कौन है, मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो पास में तीर्थपाद प्रभु खड़े थे, जो उनके रूममेट है, जो महाराज को सुबह नींद से उठाते थे, पूरा बिस्तर उठा देते थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं ये तमल कृष्ण महाराज है? तब बोला, अच्छा ये है तमल कृष्ण महाराज। उन दिनों में तमल कृष्ण महाराज माने हीरो ऑफ इस्कॉन, ऐसा कोई नहीं जो उनको नहीं जानता। प्रभुपाद के बहुत प्रिय थे वो, और वो इतने भक्त बनाते थे अपने राधा दामोदर पार्टी के माध्यम से, और इतना सुंदर प्रचार करते थे, और प्रभुपाद के बहुत प्रिय थे। और जहाँ भी प्रभुपाद जी को कोई प्रॉब्लम लगता था, पहले तमल कृष्ण महाराज को भेजते थे। इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर थे, और इस्कॉन के सैन फ्रांसिस्को मंदिर के, सॉरी लॉस एंजलिस मंदिर के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। सैन फ्रांसिस्को मंदिर में उन्होंने ज्वाइन किया था तमल कृष्ण महाराज ने, और तमल कृष्ण महाराज ने और लॉस एंजलिस मंदिर के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो महाराज बोलते, जब मैंने उनको पहली बार देखा, मुझे इतने अच्छे लगे, अच्छा ये है तमल कृष्ण महाराज, द हीरो ऑफ इस्कॉन, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतना खुश हो गया, मैंने इमीडिएटली दूर से उनको प्रणाम किया। और फिर तमल कृष्ण महाराज जो है सीधा प्रभुपाद के कमरे में गए, और प्रभुपाद जी को बताने लगे कि अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है हमारे मूवमेंट का, क्योंकि जो भी भक्त बन चुके हैं, हमारे मूवमेंट फुल टाइम ज्वाइन हो चुके हैं, उनके माँ बाप ने एक एसोसिएशन बनाया है, और वे प्रोफेशनल लोगों को हायर कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को किडनैप करो मंदिर से और हमारे पास में लेके आ जाओ, हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया है। तो बोल रहे हैं कि ये लोग जो है हमारे भक्तों को कभी रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या नगर संकीर्तन में जाते हैं तो उनको किडनैप करके लेके चले जाते हैं, और जब हम उनके खिलाफ पिटीशन देते हैं पुलिस स्टेशन में तो वो हमारे खिलाफ पिटीशन देते हैं कि उन्होंने किडनैप किया था, हमने नहीं, वो लेके चले गए हैं हमारे बच्चों को, ब्रेन वॉश किया है। तो अब अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इनको किडनैप करके उनके माँ बाप उनको टॉर्चर करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, उन्हें मारते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है, उनको मेंटल शॉक्स देते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। और फिर वहाँ पे आदिकेशव महाराज जो है वो भी मायापुर आए हुए थे, और तमल कृष्ण महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अगर आपके पास में टाइम हो तो मैं आदिकेशव महाराज को बुलाऊँ, वो आपको और डिटेल में बताएंगे वहाँ क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ क्यों नहीं उनको बुलाओ। तो आदिकेशव महाराज आते हैं, और फिर वो भी बताते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर वो एक एग्जांपल देते हैं कि आपको पता है प्रभुपाद जी, एक भक्त था, उसका नाम था वासुगोपाल, गोपाल नाम का जो ये भक्त है, उसके माँ बाप ने जो है उनको जबरदस्ती किडनैप कर दिया, कमरे में डाल दिया, और उसके बाद ये कैसे भी करके वासुगोपाल ने मुझे फ़ोन किया कि देखो मुझे यहाँ पे मेरे घर में बंद कर लिया है, मुझे आके बचाइए। तो आदिकेशव महाराज बोलते हैं कि हम सब गए, बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग, और उनके घर के दरवाज़ा को खटखटाया, खिड़कियाँ तोड़ी, और कैसे भी अंदर जाके वासुगोपाल को जो है हमने पकड़ लिया। तो फैमिली मेम्बर्स ने आके हमारे साथ फाइटिंग की, एकदम जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे में फाइटिंग हो गई, और फिर उन्होंने हमें धक्का मार के बाहर निकाल दिया, और वासुगोपाल को 30 आवर्स तक बाथरूम में बंद कर दिया। तो बोलता है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है प्रभुपाद जी, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, और हम जो कोर्ट में केस डाल रहे हैं तो जज जो है वो भी पेरेंट्स के फेवर में जजमेंट दे रहे हैं, हमारे फेवर में जजमेंट नहीं दे रहा है। तो प्रभुपाद जी को ये सब सुन के बहुत ही बुरा लगा, लेकिन प्रभुपाद जी भी जो है वो तो एकदम ब्रेव है, तो प्रभुपाद जी भी उन्हें और भी एंकरेजमेंट करते हैं कि अरे क्या है वो माँ बाप, कैसे माँ बाप, गुरु न शिष्यात, पिता न शिष्यात, यू नो जननी न शिष्यात। अगर कोई अपने बच्चों को भक्त नहीं बना सकते, उनका उद्धार नहीं कर सकते, तो उन्हें नहीं बनना चाहिए पिता माता, उन्हें नहीं बनना चाहिए गुरु। ये क्या माता पिता है, मैं हूँ उनका सच उनका पिता जो उनको भगवान से मैं जोड़ रहा हूँ। तो आप लोग चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, हम फिर से हमारे भक्तों को लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे। तो आदि केशव महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी आप सही कह रहे हैं, कभी कभी क्या हो रहा है उन भक्तों को वो ले जाके ब्रेन वॉश करके अपने पुराने कल्चर में वापस डाल देते हैं, लेकिन फिर कभी कभी वो भक्त रास्ते में किसी डिवोटी को मिल जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, तब वो हाथ में किताब लेके कृष्णा बुक लेके फिर वो भक्त बोलते हैं अरे मैं किताब खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो किताब बेचना चाहिए, मैं इधर कहाँ से पहुँच गया, अरे मंदिर कहाँ है, चलो मुझे मंदिर लेके चलो, मुझे नहीं जाना है घर वापस, मैं तो प्रभुपाद जी का सोल्जर हूँ, मुझे तो सेवा करनी है मंदिर में, मैं किताब खरीदने वाला नहीं हूँ, मैं तो किताब बेचने वाला भक्त हूँ, और फिर वो मंदिर से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये मुश्किल तो हो रही है, केस तो चल रहा है, प्रभुपाद जी इनको सबको एंकरेज करते हैं और फिर वो सब कमरे से चले जाते हैं। अब उसके बाद में आती है गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल। बोलते हैं कि गौड़ पूर्णिमा फेस्टिवल द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल था, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में एक पूरा प्लेन बोइंग 747 फ्लाइट ओनली डिवोटीज से भरा हुआ कलकत्ता में लैंड हुआ अमेरिका से, सारे भक्त उसमें, इतना आनंद, और ये सारे आ रहे थे गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए। तो महाराज बोलते इतना आनंद हम लोगों को, इतने सारे भक्त सब आए हैं, सब बैग्स उतार रहे, और बोले कि प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ गया था ऑल ओवर कि इस्कॉन के कुछ विदेशी भक्त पूरा फ्लाइट बुक करके चार्टर्ड प्लेन करके आए हैं और एयर इंडिया का पूरा स्टाफ वहाँ पे खड़ा हुआ था एयरपोर्ट में उनको वेलकम करने के लिए कि आइए आइए, और उनके इंटरव्यूज ले रहे थे और रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू ले रहे थे आप कैसे भक्त बन गए, प्रभुपा जी इतने खुश ये सब कुछ देख के। और फाइनली प्रभुपा जी बोलते हैं अच्छा चैतन्य महाप्रभु की मर्सी अब हर जगह पहुँच रही है, और बहुत सारे भक्त आ जाते हैं मायापुर। अब भक्तिचर महाराज बोलते हैं कि मुझे इतना आनंद हुआ, मैं अलग 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 भक्तों से मिला, और बोलते हैं कि एक दिन मैंने देखा एक भक्त जो है चश्मा पहना हुआ पतला सा काफ़ी गंभीर नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो मैंने किसी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है ये जयद्वेत महाराज है, प्रभुपाद जी की किताबें एडिट करते हैं, बड़े पंडित है, स्कॉलर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे मुझे कितने अच्छे अच्छे डिवोटी से मिलने का चांस मिल रहा है, तो मैंने उनके पास जाके उनको घूर रहा था, तो जयदत्त महाराज ने मेरी तरफ देख के बोला कि क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो। तो भक्तिचर महाराज ने कहा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं मैं मछली को देख रहा हूँ, देखो इस मछली को पता भी नहीं कि मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके साइकोलॉजी जो है पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महाराज हंस के बोले हाँ जिस तरह से आप मछली को देख रहे हैं और मछली को पता नहीं है कि आप उनको देख रहे हैं, शायद देवता लोग हमें देख रहे हैं, हमें पता नहीं कि देवता हमें देख रहे हैं। तो जयदत्त महाराज ने कहा कि हाँ, और उसी तरह से भगवान देवता लोग को देख रहे हैं लेकिन देवता लोग को पता नहीं है कि भगवान उनको देख रहे हैं। तो महाराज ने बोला अच्छा, तो जयदत्त महाराज ने कहा हाँ तुम्हें पता नहीं है ये जो देवता लोग हैं ना वो इतने कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते हैं, हंस के बात उड़ा ली, और महाराज को बहुत अच्छा लगा उनका एसोसिएशन। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे महाराज ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि के बारे में बताते हैं, कैसे ब्रह्मानंद स्वामी श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे और उनके भाई गर्ग मुनि, और ब्रह्मानंद स्वामी का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट थे, और गर्ग मुनि थोड़े से गंभीर रहते थे लेकिन वो बहुत अच्छा फंड कलेक्शन करते थे, और प्रभुपाद जी उनको गर्ग मुनि नहीं कहते थे, उनको गर्ग मणि कहते थे, गर्ग मणि क्योंकि वो बहुत मनी लाते थे इस्कॉन मंदिर के लिए, और प्रभुपाद जी को वो बहुत पसंद थे। और वो महाराज बस उनके बारे में बता रहे हैं कि कैसे ब्रह्मानंद महाराज भक्त बने, कैसे वो एक बार ऐसे ही 26 सेकंड एवेन्यू से पास हो रहे थे तो देखा कि वहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि प्रभुपाद जी आज भगवत गीता पे प्रवचन देने वाले हैं, तो ब्रह्मानंद महाराज अंदर में जाते हैं, प्रभुपाद जी को बोलते हैं अच्छा आप लेक्चर देने वाले हैं गीता पे, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, और उन्होंने अपने कोट से एक भगवत गीता निकाली और बोले देखिए मेरे पास भी गीता है, मैं भी गीता पढ़ चुका हूँ, एक्चुअली मैं तो भारत जाने के लिए सोच रहा हूँ एक गुरु ऐसे कुछ। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा आपके पास गीता है, अच्छा तो थोड़ा पढ़िए सुनते हैं हम आपसे भी गीता। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोलते कि हाँ मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ा। फिर प्रभुपाद ने बोला अच्छा तो अब इसमें से आपको क्या समझ में आया जरा बताइए। तो ब्रह्मानंद महाराज बोलते कि तब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो बोला कि मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर प्रभुपाद ने बोला हाँ इसलिए तुम्हें गुरु की ज़रूरत है, तुम मुझसे सुनो गीता, अब बैठो मैं सुनाता हूँ। तो ब्रह्मानंद स्वामी बोलते बस हो गया, मेरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई और मुझे समझ में आ गया बस यही मेरे गुरु है, इनसे ही मुझे समझ में आएगा क्या करना है। तो ऐसे महाराज अलग अलग भक्तों के बारे में बताते हैं। अब एक बड़ी खबर आ गई, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के 3 दिन पहले ब्रह्मानंद महाराज आए भक्त चरु महाराज के पास में और उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है प्रभुपाद तुम्हें दीक्षा देने वाले हैं? तो हाँ पता है, प्रभुपाद ने कहा था गौरपुर में मुझे दीक्षा देंगे। नहीं नहीं उसका मतलब तुम्हें पता नहीं है। अच्छा क्या पता नहीं है? प्रभुपाद तुम्हें दोनों दीक्षा देने वाले हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी और हरिनाम भी। तो महाराज ने कहा क्या एक साथ में दोनों? तो हाँ एक साथ में तुम्हें दोनों दीक्षा। भक्त चरुभाष बोलते ये क्या बात है, मैं प्रथम दीक्षा के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे मिलेगी कि नहीं, और प्रभुपाद मुझे 2 दीक्षा देने एक साथ में। बहुत खुश हो गए और ब्रह्मानंद स्वामी उनको बोलते हैं अपनी भाषा में, बॉय यू आर फॉर्चुनेट, मतलब लड़के तुम बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली हो, एक साथ में 2 दीक्षा क्या बात है। तो ये भक्त चरुभाष बोलते मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, ऐसा तो मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी प्रभुपद मुझ पर इतनी दया से। आप देखोगे तो इस पूरी किताब में भक्त चरुभाष प्रभुपद की दया के बारे में बताते, इसलिए इस किताब का नाम है कृपा सिंधु, कि प्रभुपद थे कृपा के सिंधु, कृपा के सागर। भक्त चरुभाष का भाव ये है कि क्या मैं क्वालिफाइड था, इतनी कृपा मुझ पर जो प्रभुपाद जी ने मुझ पर जो ये कृपा की है, क्या मैं उसके काबिल भी था इतनी शॉर्ट समय में, द शॉर्टेस्ट टाइम में, और इतना ज़्यादा प्यार मुझे दिया, इतनी ज़्यादा कृपा मुझ पर दिखाई। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रभुपाद जी के ऊपर में, और बोलते हैं अब मुझे क्या करना है, मतलब बहुत हम्बली पूछते हैं तो अब मैं क्या करूँ। तो ब्रह्मानंद महाराज बोलते क्या करोगे, कुछ नहीं, जाओ गंगा में नहाओ और दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, अच्छा से हेड शेव करो और आ जाओ, बस इतना ही करना है तुम्हें। वो एकदम रेडी हो गए और उनकी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा करते समय आपको पता है ना क्या होता है, वो ऐसे मृदंग बजाते हैं ढन 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 और आपका नाम बोला जाता है। तो अभी अच्युतानंद महाराज जो थे, अच्युतानंद स्वामी, वे जो है दीक्षा के वॉज दे रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी खुद नहीं क्योंकि वे ऊपर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके जो शिष्य थे वे ही आपसे बुलवाएंगे, अच्छा बोलो 4 नियम क्या है, अच्छा बोलो तुम क्या अभी प्रण ले रहे हो, ये सब कुछ होने के बाद फिर प्रभुपाद जी जो है नाम देंगे। जो प्रभुपाद जी ने जो नाम सेलेक्ट किया है वो इन शिष्यों के द्वारा बोला जाएगा, क्योंकि हर एक पर्सन को पर्सनली माला प्रभुपाद नहीं दे पाते थे बिकॉज उनकी तबीयत। तो अब जब भक्त चरु महाराज का टर्न आया तो भक्त चरु महाराज बोलते हैं कि बस अब जोर से मृदंग बज रहा है और अच्युतानंद स्वामी ने बोला कि तुम्हारा नाम है खीर चोर गोपीनाथ। और भक्त चरु महाराज बोलते मुझे इतना प्यारा लगा वो नाम, खीर चोर गोपीनाथ, कितना सुंदर नाम। और हम सब जानते हैं खीर चोर गोपीनाथ की कहानी, कैसे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान खीर चोर करते हैं, तो खीर चोरी करते हैं, तो भक्त चरु महाराज सोचते ओह तो मैं ऐसे भगवान का दास हूँ जो अपने। सो दीक्षा के बाद में क्या करते हैं, गुरु दक्षिणा देनी है, तो सब गुरु दक्षिणा लेके जो है प्रभुपा जी कमरे में पहुंच गए। भक्त चरु महाराज उस कमरे में बैठे थे, उन्होंने देखा सब लेके आया, अरे मैं नहीं लेके आया, मैं तो सेवा में बिजी हो गया, मैंने गुरु दक्षिणा मांगी ही नहीं। फिर वो प्रभुपा जी के पास गए और एकदम नीचे नीचे मस्तक करते हुए कहा कि प्रभुपा जी सबने जो है आपको गुरु दक्षिणा दी, मैं आपको कुछ नहीं दे पाया। और फिर यहाँ पे प्रभुपा जी बोलते हैं कि तुमने अपने आप को मुझे दे दिया, उससे बड़ी गुरु दक्षिणा मुझे क्या चाहिए। और फिर भक्त चरु महाराज ने सोचा हाँ ये बात तो सही है, वो लोग शायद कुछ लेके आके गुरु को दे रहे, मैंने तो अपने आप को मेरे गुरु को दे दिया। और फिर भक्त चरु महाराज अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने उस दिन रात को जब प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा, बोला प्रभुपाद जी हाँ ये बात सही है, प्रभुपाद जी सब गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, आई ऑफर माई सेल्फ टू यू, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। वो बोलते हैं कि प्लीज़ डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ मी, मेरे साथ आप क्या करना चाहते हैं, मुझे कैसे उपयोग करना चाहते हैं मुझे करिए, मैं अपने आप को आपको देता हूँ। तो ये इतनी सुंदर लगी ये बात, यू नो ये है भक्त चरु महाराज के सुंदर गुण, अपने आप को जो है वो प्रभुपाद जी को दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वन मॉर्निंग प्रभुपाद जी सडनली भक्त चरु महाराज को कहते हैं कि मैं एक, हाँ कोई बात नहीं, मैं तुमको मेरे इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी बनाता हूँ. तो भक्त शर्मा बहुत खुश हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी. उसके बाद तमल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि देखो मैंने खीर चोर गोपीनाथ को जो है इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी बनाया है और तुम इसका विशेष ध्यान रखो. तो तमल कृष्ण महाराज उनको कहते हैं कि अब एक काम करो, तुम्हारा सामान वगैरह पैक करो. बोलता क्यों? बोलते अब से तुम मेरे कमरे में रहोगे. तो बोलते आपके कमरे में? उनके लिए तमल कृष्ण महाराज बस लाइक ए हीरो. तो आप उनको तो तमल कृष्ण महाराज को देखने में इतना आनंद आता था और अब उनके साथ रहना. बोलता हाँ अब से तुम हमारे मेरे कमरे में रहोगे. और फिर वो तमल कृष्ण महाराज के कमरे में शिफ्ट हो गए. तो महाराज बोलते कि कमरे में दो बेड थे और महाराज ने मुझे एक बेड दिखाया और बोला कि तुम जो है यहाँ मेरे साथ रहो. तो अब ये हो गया. अब महाराज यहाँ पे बोलते हैं कि तमल कृष्ण महाराज के साथ में बिताए हुए दिन मेरे हृदय के काफ़ी करीब है. मुझे इतना आनंद लगता था, उनसे मैंने इतनी सारी बातें सीखी. वे इतने डायनामिक थे, इतने एक्टिव थे. सुबह जल्दी उठ जाते थे, 3 बजे ही उठ जाते थे, नहा धो के जप कर लेते थे. और वो सी जस्ट सी द ब्यूटी हियर. मैं एक बात बता रही हूँ, उनके गुण देखिए. तमल कृष्ण महाराज जब सुबह 3 बजे उठते थे तब भक्तचार्य महाराज बोलते हैं कि वे कमरे की लाइट ऑन नहीं करते थे. वो सोचते थे कि मैं लाइट ऑन करूंगा तो ये उठ जाएगा, जितना देर थोड़ा और सो सकता है तो सोने दो, जब तक मैं नहा लेता हूँ उसके बाद उठाऊंगा. तो वो लाइट ऑन नहीं करके नहाने चले जाते थे. लेकिन उनकी एक आदत थी, वे जब भी नहाने जाते थे वे श्रील प्रभुपाद का कोई भी एक लेक्चर टेप लगा के जाते थे. तो भक्तचार्य महाराज बोलते थे मैं ऐसे ही उठ जाता था क्योंकि प्रभुपाद जी का लेक्चर टेप्स सुनाई देता था. लेकिन मैं उठता नहीं था बिस्तर से, बस ऐसे ही पड़ा पड़ा सुनते रहता था. और जब तमल कृष्ण महाराज के बाथरूम का पूरा जो हो जाता है काम, वो बाहर आते थे, फिर मैं तब उठता था, फिर मैं नहाने जाता था. तो बोलते कि उनके साथ जो मेरे बिताए हुए दिन इतने अच्छे थे, उनसे मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी. वे इतने पर्टिकुलर थे, उनका स्केड्यूल इतना परफेक्ट रहता था. तो फिर यहाँ पे महाराज बोलते कि उनके साथ मुझे बहुत आनंद आया. और इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को बताने लगा कि तमल कृष्ण महाराज कितने अच्छे हैं ना, वो कितने प्यारे हैं ना. तो एक बार भवानंद महाराज ने कहा कौन प्यारा है? तमल कृष्ण महाराज. वो तुम्हारे साथ ही प्यारे हैं, अदरवाइज वो बहुत गुस्से वाले हैं. इसलिए तो हम उनको हॉट तमल बोलते हैं. हॉट तमल, गरम तमल हम ऐसा बोलते हैं. सबको उनसे डर लगता है. अब पता नहीं तुम में ही शायद ऐसी कोई खासियत है कि तुम्हारे साथ ही वो बहुत प्यार से जो है बर्ताव कर रहे हैं. सी ऐसा नहीं कि उनका सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज तमल कृष्ण महाराज काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, एकदम सब कुछ ठीक रहना चाहिए. वो लीडर थे ना, उनके उनके सिर पे इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी. लेकिन भक्तचार्य महाराज के साथ में विशेष प्रेम था. उनके साथ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते थे वे, उनके कुछ डांटते नहीं थे कभी. इनफैक्ट भक्तचार्य महाराज बोलते कि वे इतने स्ट्रिक्ट थे, उनको प्रसाद वितरण करने में भी भक्त डरते थे, कांपते थे कि कहीं गलती हो जाएगी तो डांट लगाएंगे. लेकिन वही अगर भक्तचार्य महाराज कोई गलती कर भी दे तो उनको डांट नहीं लगाते थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग और कहानी बताते हैं, कैसे ऑस्ट्रेलिया के जो GBC थे वे इस्कॉन छोड़ के चले गए. तो अब ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रचारक की ज़रूरत थी, तो हरिसौरी प्रभु जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया. तो अब प्रभुपाद के सेक्रेटरी की पोजीशन खाली हो गई. तो अब वे लोग सोच रहे थे किसको डाले किसको डाले. तो एक बार हरिसौरी प्रभु जो है भक्तचार्य महाराज के पास में आए और उन्होंने पूछा तुम्हें खाना बनाना आता है? तो मुझे क्या मालूम, भक्तचार्य महाराज बोलते मैंने बोल दिया हाँ आता है. अच्छा वेरी गुड. तो वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद इनको खाना बनाना आता है, इनको सेक्रेटरी बना लो. तो फिर बोले क्या मैं सेक्रेटरी प्रभुपाद के लिए खाना? फिर भक्तचार्य महाराज बोलते मुझे लगा अरे मैंने ऐसा बोला क्यों, मुझे उतना कुछ खाना बनाना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ. बोलते कि मुझे कोई खाना बनाना इतना कुछ अच्छा से नहीं आता है, लेकिन एनीवे जब बोल दिया तो अब क्या कर सकते हैं. तो मान जाते हैं. अब वो प्रभुपाद की सेक्रेटरी बन गए. अब भक्तचार्य महाराज काफ़ी इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया कि मुझे खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन पिशिमा है मायापुर में. पिशिमा कौन है? प्रभुपाद जी की बहन, और उनको खाना बनाना बहुत अच्छा से आता है. तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ना पिशिमा से गाइडेंस लेके बना लूंगा खाना. तो वो सीधा पिशिमा के पास भागे और बोले कि देखो ऐसा हरिसौरी प्रभु तो चले जा रहे हैं, तो मुझे बना सेक्रेटरी बना दिया है, तो मुझे खाना बनाना, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो मैं आपकी गाइडेंस. और पिशिमा ने बोला इतना सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी, तुम खड़े रहो देखो. भक्तचार्य महाराज बोलते कि मैं खड़ा हूँ और मैंने सोचा कि मैं पिशिमा की मदद करूंगा, लेकिन पिशिमा इतनी एक्सपर्ट है, वे खुद ही सारी वेराइटीज पूरा बना दिया। मैं कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रहा और सब कुछ बनाने के बाद में पिशिमा ने वो सारा जो प्रसाद है प्लेट में डाला और मुझे बोला अब जाओ जाके प्रभुपाद जी के रूम में देखे आओ। मैंने बोला अच्छा ही है, चलो मुझे कुछ बनाना भी नहीं पड़ा। मैं प्रसाद इतनी सारी वेराइटी प्लेट लेके मैं गया प्रभुपाद जी कमरे में और मैंने प्रसाद रखा और मुझे लगा प्रभुपाद जी इतने खुश हो जाएंगे कि क्या बात है इतनी वैरायटी। और प्रभुपाद जी ने इमीडिएटली प्लेट की तरफ देखा, मेरे तरफ देखा और बोला किसने बनाया प्रसाद, किसने बनाया? तो सच बोल दिया, पिशिमा ने बनाया। तो फिर प्रभुपाद ने बोला मैंने तुमको बनाने के लिए बोला था कि पिशिमा को बनाने के लिए बोला था, इस प्लेट को लेके जाओ यहां से, चलो लेके जाओ। तो मुझे आश्चर्य हो गया कि प्लेट देख के प्रभुपाद जी को कैसे पता चल गया कि पिशिमा ने बनाया है, क्योंकि पिशिमा की एक स्टाइल थी बनाने के लिए। एक तो उनका फूड स्पाइसी बहुत होता था, ऑयली बहुत होता था, और प्रभुपा जी की बहन है ना, तो प्रभुपा जी तो वो स्मेल से पहचान जाएंगे कि ये तो मेरी बहन ने बनाया हुआ है। तो प्रभुपा जी उनको डांटते हैं, बोलते तुम्हें और खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब भक्त चरण महाराज बोलते मुझे इतना दुख लगा कि मैंने इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी जो है खो दिया। गुरु के लिए खाना बनाने का चांस था और मुझे लगा मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरा वो सेवा ही प्रभुपा जी का जो है मुझसे छीन लिया, किसी और को वो सेवा दे दिया। उसके बाद में आता है, अब वो सेवा तो चली गई, लेकिन प्रभुपाद जी के कमरे के पास वाले कमरे में भक्त चरण महाराज रहते थे। तो भक्त चरण महाराज बोलते एक दिन ना मैं बहुत अच्छा से जप कर रहा था हरे कृष्णा, अब मुझे पता है कि प्रभुपाद जी मेरे पास वाले कमरे में है, तो मैं थोड़ा सा जोर से कर रहा था कि प्रभुपाद जी को सुनाई देगा ना, अच्छा हो मैं जप कर रहा हूँ, और जोर से। फिर थोड़ी देर के बाद में ना कमरा खुला, प्रभुपाद जी ने मुझे अंदर बुलाया और फिर प्रभुपाद जी ने मुझे बोला क्या तुम थोड़ा धीरे कर सकते हो चैंटिंग। तब बोलते कि मुझे इतना बुरा लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी मुझसे खुश होंगे, लेकिन मैंने तो गुरु को इनकन्वीनियंस में डाल दिया, तो मैं इतना एम्बेरस हो गया। प्रभुपाद जी ने बोला धीरे धीरे चांटिंग किया करो, इतना जोर जोर से जप मत करो। फिर बोलते प्रभुपाद जी को एक बार भक्त चरण महाराज पूछते हैं कि मैं ना प्रभुपाद जी मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, क्या मैं संस्कृत सीख सकता हूँ? तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला तुम संस्कृत क्यों सीखना चाहते हो? तो बोलते हैं कि संस्कृत क्यों सीखना चाहता हूँ, क्योंकि सो दैट मैं शास्त्र को और अच्छी तरह से समझूं। और फिर प्रभुपाद ने इमीडिएटली नकार दिया, बोले कि हम पंडित बनने के लिए नहीं है यहाँ पे, हम भक्त बनने चाहते हैं, हम कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, हम कोई पंडित बनने के लिए नहीं आए हैं, मेरी किताब पढ़ो काफ़ी है, तुम्हें संस्कृत आ जाएगा। भक्त चरण महाराज बोलते और मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैं प्रणाम करके निकल गया। अब क्या हो गया, धीरे धीरे प्रभुपाद जी की तबीयत खराब होती हुई चली गई, उनको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, दो उनके पास लकड़ी थी फिर भी दो तीन भक्तों को उन्हें पकड़ना पड़ता था। प्रभुपाद जी के कमरे में अटैच बाथरूम नहीं था और लोटस बिल्डिंग में प्रभुपाद के कमरे से वो लास्ट एंडिंग में बाथरूम होते थे, कॉमन बाथरूम, वहाँ प्रभुपाद जी को ले जाना पड़ता था। तो दिन ब दिन अब जो है प्रभुपाद जी की हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। अब सबने डिसाइड किया प्रभुपाद जी को ऐसे भी एलोपैथिक मेडिसिन पसंद नहीं है और आयुर्वेदिक प्रभुपाद बोलते मुझे सूट नहीं होती है। फिर भी प्रभुपाद जी को ऐसे तैसे मना के जो अभिराम प्रभु है वो एक फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेके आए, डॉक्टर विमलानंद तर्कतीर्थ उसको लेके आए मायापुर प्रभुपाद जी को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब ये थे, वे खुद ही काफ़ी बूढ़े थे, वे भी अपने लेट 80s में थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको पहले से अपने कलकत्ता के दिनों से जानते थे, तो मोर देन द ट्रीटमेंट प्रभुपाद जी उनसे बातें करते और बहुत ही आनंद होता था, हंसी मजाक करते थे, कुछ ना कुछ बातचीत करते थे, उनको अच्छा लगता था। और वो कभी भी जो है भक्त चरण महाराज बोलते हैं यहाँ पे अपनी किताब में कि मुझे पता नहीं वो ट्रीटमेंट के बारे में सीरियस थे कि नहीं थे, लेकिन उनके साथ बातें करने में उनको बहुत अच्छा लगता था, एक दूसरे का एसोसिएशन वे एंजॉय करते थे। और फिर इस ट्रीटमेंट के बीच बीच में प्रभुपाद अपनी पूरी कहानी एक बार इस डॉक्टर को बताते हैं, मैं कैसे इस्कॉन शुरू किया, कैसे मेरे एक मित्र नरेन मलिक मुझे एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए लेके गए और कैसे मैं उनको मिलना नहीं चाह रहा था और फिर भी वो मुझे फोर्स किया, उसके बाद में मेरा जीवन बदल गया, मैंने अपने वो डॉक्टर बोस कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया, अपना खुद का बिजनेस इलाहाबाद में शुरू किया, तब मैं गौड़ीय मठ वालों को भी वहाँ हेल्प करता था, उसके बाद में मैं विदेश गया, मैंने अमेरिका में कैसे शुरू किया। तो भक्त चरण महाराज अपनी किताब में बोलते कि मुझे इतना आनंद लगा कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ, प्रभुपाद जी की पूरी कहानी मैंने प्रभुपाद जी के मुंह से सुनी कि उनकी पूरी स्ट्रगल, उनकी पूरी जर्नी मैंने सुनी और मुझे लगा कि शायद मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, मैं हर इतने करीब उनके पास रह के उनकी हर बातें सुन पा रहा हूँ, हर क्या बोलते हैं ना, हर इंस्ट्रक्शंस सुन पा रहा हूँ। एक बार प्रोपा जी गांव में जो है श्रीपाद महेश पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के इंटीमेट एसोसिएट थे, उनका जो श्रीपाठ, उनका जो जन्म स्थान था वो मायापुर से कुछ दूर में ही था। तो वहाँ पे विलेज में फेस्टिवल हुआ, वहाँ प्रोपा जी गए, भक्त सरमाज भी उनके साथ में गए थे और वहाँ पे प्रोपा जी ने बहुत सुंदर क्लास दिया और वहाँ पे बंगाली क्राउड था, विलेज क्राउड था और प्रभुपाद वहाँ पे बता रहे थे कि भाई भारत भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें जन्म सार्थक करके जो है दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। सिंपल विलेजर्स थे और भक्त शर्माज बोलते कि मुझे नहीं लगता कि वो शायद कभी अपने विलेज से भी एक पैर कदम बाहर रखे होंगे, लेकिन प्रभुपाद उनको भी बोल रहे थे कि तो आप लोग को भी प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए आप लोगों को। और बहुत सुंदर जो है प्रभुपाद जी ने क्लास दिया। और उसके बाद में कल्याण दास नाम का एक सेकंड इनिशिएटेड बंगाली डिवोटी वहाँ पे आया, प्रोपा जी से मिला, लेकिन प्रोपा जी उससे गुस्सा हो गए क्योंकि वो प्रोपा जी से पूछ रहा था कि मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है और प्रोपा ने बोला कि तुम ये कहाँ से ये सब बकवास सीख के आए हो, ये सब क्या बात कर रहे हो। प्रोपा जी ने उन्हें खूब डांटा। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स प्रोपा जी की लाइफ में जो भक्त चरमाज ने क्लोज क्वार्टर से देखा उसके बारे में अपने किताब में लिखते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी बॉम्बे जा रहे थे क्रॉस मैदान प्रोग्राम के लिए और महाराज को भी उनके साथ जाने की इच्छा थी, लेकिन भवानंद महाराज ने बोला कि नहीं तुम नहीं जा सकते, मायापुर में बहुत सारे काम है, क्योंकि बंगाली जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, ऑफिसर्स से बातचीत करना है, बहुत सारे काम पड़े, तुम नहीं जा सकते। तो उन्हें बहुत दुख लगा, उनकी बहुत इच्छा थी प्रभुपाद जी के साथ जाने के लिए, लेकिन क्या करें। तो क्रॉस मैदान प्रोग्राम के लिए बॉम्बे निकलने के लिए पहले दो चार दिन पहले प्रभुपाद जी के साथ कमरे में भक्तचारू महाराज बैठे थे, वे जप कर रहे थे। प्रभुपाद ने सडनली पूछा कि तुम आ रहे हो बॉम्बे मेरे साथ, तो इन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद मैं बॉम्बे नहीं आ रहा हूँ। और फिर उन्होंने पूरा लेक्चर भी बताया जो भवानंद महाराज ने दिया था कि गुरु के साथ रहना नहीं, गुरु के विरह में सेवा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापू सेवा से भी वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु के सेपरेशन में जो सेवा कर सकता है वो ज़्यादा। तो ये सब भी वो बोल दिए प्रभुपाद को कि ना वो एक्चुअली भवानंद महाराज बोल रहे थे कि गुरु के सेपरेशन में सेवा। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर गुरु खुद चाहते हो तुम्हारा साथ तब क्या, मैं चाहता हूँ कि तुम। तो फिर भक्त शर्मा जी बोला तो क्या आप चाहते कि मैं आपके साथ आऊँ, तो बोला हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ आओ। तब भक्त शर्मा जी इतने खुश हो गए, वो भागे कमरे से बाहर और फिर उन्होंने भवानंद महाराज को बोला कि महाराज एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे कि मैं उनके साथ जाऊँ। तो भवानंद ने बोला ठीक है अगर प्रभुपाद की इच्छा है तो तुम जाओ। और फिर महाराज ने बोला कि मैंने फिर उनके साथ जोक भी किया, मैं प्रभुपाद के साथ जाऊँगा और प्रभुपाद जी ने ऐसा भी बोला है कि मेरी टिकट भी आपको ही देनी पड़ेगी। तो फिर भवानंद महाराज हंस के बोलते हैं हाँ बाबा टिकट भी मैं ही दूंगा, ठीक है तुम जाओ प्रभुपाद जी के साथ। तो महाराज इतने ही खुश हुए। अगर हम महाराज जी की किताब पढ़ते ना तो हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद जी को भक्ति चारू महाराज के लिए एक विशेष प्रेम था, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा उनके साथ रहना, उनको तो प्रभुपाद के साथ रहना अच्छा लगता ही था, प्रभुपाद को भी उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। वो उनको विशेष चुने थे कि तुम मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथ रहो। अब वे पहुंच गए बॉम्बे। अब जैसे बॉम्बे पहुंच गए वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मंदिर अभी पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, दो टावर बन चुके थे गेस्ट हाउस के, प्रभुपाद के क्वार्टर में बाथरूम में दरवाजा नहीं लगा हुआ था, एक दो जगह में लाइट बाकी थी। तो एयरपोर्ट से लेके आके इन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी अभी बन रहा है, आप किसी और के घर में रहिए, हमारे एक बड़े लाइफ मेंबर है कार्तिक महादेवियन, काफ़ी अमीर है, उनका घर भी बहुत कंफर्टेबल है, आप उधर रहिए। प्रभुपाद ने बोला मैं किसी के घर में नहीं रहूँगा, मुझे तो यहीं रहना है मेरे कमरे में। बस प्रभुपाद गए, वो जो हाफ कंस्ट्रक्टेड कमरा था वहाँ जाके बैठ गए, मैं यहीं रहूँगा मेरे कमरे में ही रहूँगा। अब जो सुरभि महाराज वहाँ पे जो थे, गिरिराज महाराज थे, कैसे समझाए प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है फैसिलिटीज़। फिर उनको आइडिया आई, प्रचार के नाम पे कुछ भी बोलो तो प्रभुपाद मान जाते हैं। फिर उन्होंने कहा देखिए प्रभुपाद जी कार्तिक महादेव इनका घर जो है वो सिटी सेंटर में है, वहाँ से आपका क्रॉस मैदान प्रोग्राम पास में है, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप उनके घर में रहिए। मान गए प्रभुपाद, ठीक है मैं रहूँगा। कार्तिक महादेव इनके घर में रहने लगे, उन्होंने अपना पूरा फ्लैट खाली कर दिया था प्रभुपाद जी के लिए, वो नीचे के फ्लोर में चले गए थे अपने भाई के साथ रहने के लिए और ये पूरा फ्लैट प्रभुपाद और उनके शिष्यों के लिए, सर्वेंट्स के लिए रख दिया था। अब बहुत आनंद आ रहा था रोज़ सुबह शाम जो है लोगों से मिलना, शाम को क्रॉस मैदान प्रोग्राम में जाना, और आने के बाद में इतने थक जाते थे प्रभुपाद, सीधा सो जाते थे। और भक्तचारू महाराज क्या करते थे, आके प्रभुपाद जी का फीट मसाज करते थे और कभी कभी प्रभुपाद बहुत सारी बातें करते थे। तो एक दिन प्रभुपाद उनको पूछते कैसा था आज का क्लास, अच्छा था क्या, सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी है, सबको तो ये बात नहीं पूछते, पर्सनल सेक्रेटरी से कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसा बोला मैंने, ठीक बोला, क्या बोला, कैसे बोला, अच्छा लगा। तो भक्तिचरण महाराज ने बोला बहुत अच्छा बोला। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा क्या बोला। तो भक्तिचरण महाराज ने पूरा बताया कि आपने क्या बोला, आपने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। प्रभुपाद जी को इतना अच्छा लगा कि अच्छा उसका मतलब कितना सावधानी से तुमने मेरा पूरा प्रवचन सुना, बताया नहीं, बट प्रभुपाद वॉज प्लीज्ड। और फिर जब पूरी लेक्चर जो बताते कि आपने ऐसा ऐसा कहा, फिर प्रभुपाद पूछते हैं क्या तुम सोचते हो कि वहाँ पे जितने लोग बैठे थे ध्यानपूर्वक मेरा प्रवचन सुन रहे थे, क्या वो ध्यान से सुन रहे थे। तो भक्तिचरण महाराज बोलते हाँ प्रभुपाद ध्यान से सुन रहे थे एकदम। और आपने देखा ना क्लास के एंड में जब कीर्तन हुआ तब सब एकदम कीर्तन में भी नाचने लगे। और कभी कभी प्रभुपाद पूछते थे भक्तिचरण महाराज को क्या सोचते हो कितने लोग आए थे आज, कितने लोग होंगे। तो भक्तिचरण महाराज बोलते लगता है कम से कम 10,000 लोग होंगे। और प्रभुपाद इतने खुश हो जाते थे एकदम आनंद, अच्छा इतने लोग थे, बहुत खुश। तो ये सारी इंटीमेट बातें जो है वो भक्तिचरण महाराज के साथ में करते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि उस क्राउड में एक अरब आदमी बैठा था क्रॉस मैदान प्रोग्राम में, और प्रभुपाद ने इमीडिएटली भक्तों को भेजा कि उसको बुलाओ स्टेज में मेरे पास बिठाओ। और बाद में पता चला कि वो अरब आदमी जो है वो कुवैत से आया हुआ था और कोई पुलिस डिपार्टमेंट का हेड था, और प्रभुपाद वो एक हॉस्पिटल में एडमिट था बॉम्बे में, कोई ट्रीटमेंट करवा रहा था, और उसी दिन उसको हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया था। तो वो वॉकिंग करते करते इस क्रॉस मैदान प्रोग्राम के अंदर में घुस गए थे कि इतना क्राउड क्यों है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और प्रभुपाद ने इमीडिएटली उसको उनकी वेशभूषा देख के उनको सम्मान दिया। तो भक्तिचरण महाराज बोलते कि मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रभुपाद इतने बड़े आध्यात्मिक लीडर होने के बावजूद उनको कोई भेदभाव नहीं था कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा कोई उनका, वे तो सबको भगवान की भक्ति देना चाहते हैं, बस जो लेना चाहता है ले लो, वो देने के लिए तैयार है। तो बस बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सब बढ़िया से चल रहा है। अब काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं एक दो कहानी बोल के ख़त्म करूँगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है क्लास। क्रॉस मैदान प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में एक बार प्रभुपाद जी ने भक्तिचरण महाराज से कहा रात को, कि रात को 1 बजे बेल मारी और कहा कि मुझे लगता है कि मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया है। एक्चुअली प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो वे कुछ दिनों के लिए ऋषिकेश गए थे। वहाँ पे किसी डोनर ने बहुत सुंदर कमरा अरेंज किया था उनके लिए, और वहाँ पे ठीक ही चल रहा था। प्रभुपाद जी कभी कभी खुद खाना भी बना लेते थे, लेकिन एक दिन रात को 1 बजे उन्होंने बेल मारी और भक्तिचरण महाराज जब मच्छरदानी के अंदर में गए, प्रभुपाद जी क्या हुआ, तो प्रभुपाद जी ने बोला लगता है कि मैं शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तो तुम मुझे ले चलो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो फिर भक्तिचरण महाराज ने इमीडिएटली दूसरों को उठाया कि प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं, चलो हम चलते हैं। उसके पहले ऋषिकेश में एक इंसिडेंट हुआ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी ने एक बार बोला कि मैं कुछ आज स्पेशल आइटम बनाऊंगा, तो तुम जो है थोड़ा ऑयल लेके आओ, थोड़ा ये लेके आओ, सारे सामान लेके आओ, थोड़ा घी है, थोड़ा ये, और बहुत सारी चीज़ें। और फिर प्रभुपाद जी ने उनको वो स्पेशल आइटम बनाने के लिए सिखाया। अब उसको बोलते हैं बाटी चचरी। बाटी चचरी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा तेल देते हैं और बहुत ज़्यादा मिर्ची पाउडर भी देते हैं। तो इतना ज़्यादा तेल उसमें दिया, तो थोड़े बार, अब ये टिन में से तेल डाल रहे हैं भक्तिचरण महाराज, अब बार बार डालते डालते रुक जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल हो रहा है। तो प्रभुपाद उनको डांट रहे हैं कि मैंने तुमको बोला क्या स्टॉप करने के लिए, चलो डालते रहो। तो डालते रहे इतना ऑयल। उसके बाद में जो है प्रभुपाद ने बोला कि मैं तुमको जितना बोलता हूँ उतना ही करो, इस आइटम को ऐसे ही बनाते हैं। बोला ठीक है। तो उस दिन प्रभुपाद जी ने वो बाटी चचरी बनाई और चपाती के साथ में वो ही खाया। जब वे वृंदावन चले गए थे ऋषिकेश से, जब उनकी तबीयत खराब थी, एक बार प्रभुपाद ने फिर से भक्तिचरण महाराज को बोला मैंने तुमको सिखाया था ना वो बाटी चचरी कैसे बनाते हैं, बनाओ। तो अब भक्तिचरण महाराज मन में सोचने लगे कि प्रभुपाद जी की तबीयत खराब है, इतना तेल डालना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑयल डाल के बना दिया। जब उनके प्लेट में वो आया, प्रभुपाद जी ने इतना डांटा, बोला ये ऐसे बनाते हैं, मैंने तुमको पर्सनली सिखाया, तुम भूल कैसे गए, इसको कैसे बनाते हैं। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया, इतना डांटा, जोर जोर से एकदम चिल्लाने लगे, महाराज कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन फिर से खाने के लिए बैठे तो बोला लेकिन तुम भूल कैसे गए, मैंने तुमको खुद बोला। आज कुछ शांत थे प्रभुपाद। फिर भक्तिचरण महाराज ने मुँह खोला, प्रभुपाद मैं भूला नहीं हूँ, मुझे पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं वो डालना नहीं चाह रहा था ऑयल। फिर प्रभुपाद ने बोला, अरे रे, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, कुछ नहीं होगा, तुम्हें समझ में नहीं आती है। जब हम ज्यादा मिर्ची पाउडर डालते हैं और ज्यादा ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल और मिर्ची पाउडर एक दूसरे के अपोजिट में काम करता है। ये उसका पावर कम कर देता है, ये इसका पावर कम कर देता है। तो इसलिए कभी भी तेल कम नहीं डालना चाहिए इस डिश में, ज्यादा ही डालना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आई, जो गुरु जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको एज इट इज लेना चाहिए। तुमको शायद हाफ ऑफ द थिंग पता नहीं है। तो भक्ति सर महाराज बोलते, मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कभी कभी हमें हाफ ऑफ द मैटर पता नहीं है, हमें एज इट इज कर देना चाहिए उसको। एक बार प्रभुपाद जी ने बोला, मुझे ना आज संतरे का जूस पीना है, जाओ संतरे का जूस बनाओ। भक्ति सर महाराज किचन में गए, चलो मैं संतरे का जूस बनाऊंगा, देखे तो संतरे नहीं है। अब फिर से जाके प्रभुपाद को क्या बोलना कि संतरे नहीं है, बोलने की क्या जरूरत है। वो सीधे भागे मार्केट में, संतरे लेके आ गए। प्रभुपाद जी बेल बजा रहे कि संतरे का जूस बनाने के लिए इतना देर? महाराज भाग के आए, हाँ प्रभुपाद कहाँ है मेरा संतरे का जूस? बना रहा हूँ। फिर अब संतरे छिल रहे हैं, डाल रहे, फिर से बेल मारा, मेरा संतरे का जूस, हाँ बना रहा हूँ, फिर से बेल मारे। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो के बेल मारते जा रहे। भक्त सर महाराज फटाफट जूस बना रहे। फाइनली जूस लेके, प्रभुपाद जूस। प्रभुपाद बोले, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जूस, जाओ लेके जाओ। इतना गुस्सा आ गया कि इतना देर एक संतरे का जूस बनाने के लिए। अब भक्ति सर महाराज ऐसे ही खड़े हैं, वो प्लेट में संतरे का जूस है, बस वो ऐसे ही मुंह नीचा करके खड़े हुए हैं। बस प्रभुपाद नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो खड़े हैं। प्रभुपाद नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो खड़े हैं। 5-10 मिनट के बाद में प्रभुपाद ने बोला, ठीक है जूस पी लिया। अब जूस तो पी लिया, लेकिन जूस पीने के बाद में वो हाथ और मुंह धोएंगे ना, तो पानी लाना भूल गए क्योंकि ऑलरेडी गुस्सा। फिर वो जो है नैपकिन लेके आते हैं, प्रभुपाद जी का मुंह साफ करता है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम कितने प्यार से मेरी सेवा करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं तुम पे गुस्सा हो जाता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, बूढ़े लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, बूढ़े लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुम माफ़ कर दो मुझे। तो भक्ति चारु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब डांटा तब इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो तब मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि डांट देते तो कोई बात नहीं, माफ़ी क्यों मांग रहे, आपका पूरा हक है, आप हमें डांटो, हमें आप कुछ भी बोलो लेकिन माफ़ी मत मांगो। ऐसे ही एक बार होता है कि प्रभुपाद जी वृंदावन में भक्त चारु महाराज को बोलते कि मैं एक नई डिश बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए कद्दू, मुझे चाहिए खरबूजा, मुझे चाहिए करेला और कुछ अलग अलग आइटम जो है मांगते हैं। तो भक्त चारु महाराज बोलते हैं, ठीक है मैं अभी मार्केट जाता हूँ लेके आता हूँ। फिर मार्केट जाते हैं, सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं। प्रभुपाद जी उनको पूछते, सो सब लेके आ गए? तो भक्त सर महाराज बोलते, हाँ आपने बोला था ना खरबूजा, कद्दू, और आपने बोला था। अब बोलते बोलते उनको याद आया कि करेला तो मैं भूल गया, लेकिन अगर अभी बोलूँगा तो फिर प्रभुपाद जी डांटेंगे, तो फिर वो झूठ बोलते, और करेला मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ। प्रभुपाद जी बोलते, वेरी गुड, सब कुछ लेके आ जाओ, मेरा मसाज हो रहा है ना, मैं तुमको वहाँ पर बताऊँगा कैसे कटिंग करते हैं सारी सब्जियाँ। तो बोलते ठीक है। वे सीधा किचन में जाते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस का एक आदमी है जो गेस्ट हाउस में काम करता है, उसको बोलते कि अरे तुम जल्दी जाओ साइकिल लेके, करेला भूल गया हूँ, मार्केट में जाओ करेला लेके आ जाओ। बोलते अच्छा मैं अभी गया। वो जाता है करेला लेने के लिए। मीनवाइल बाकी सारी सब्जी कलेक्ट करके वे रेडी हो रहे हैं। वो 10 मिनट के बाद आता है, बोलता है करेला नहीं है, पूरा मार्केट ढूंढ लिया। अभी महाराज को टेंशन हो जाता है कि अरे बाप रे करेला नहीं है, मैंने तो प्रभुपाद जी को बोल दिया कि करेला है, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? आंख में से आंसू आ जाते कि गुरु के सामने झूठ बोला, अब मैं प्रभुपाद जी को जाके बोलना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी मैंने झूठ बोला, मैं करेला नहीं लाया था। ऐसे सोचते सोचते जब किचन में गया, देखा किचन में एक करेला पड़ा हुआ है जमीन के ऊपर में, एकदम ताजा ताजा ग्रीन करेला। बोले ये करेला कहाँ से आ गया? साथ ही साथ में वो करेला उठाते हैं, सारी सब्जियाँ उठाते हैं और प्रभुपाद जी कमरे में जाते हैं, और फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे मसाज ले रहे हैं। तो बोलते अच्छा अच्छा चलो अभी तुम आ गए सारे सब्जी, हाँ चलो काटो, खरबूजा को ऐसे काटो, देखो त्रिकोण बनाओ इसको ऐसे काटो। तो प्रभुपाद जी मसाज ले रहे हैं और बक्सर महाराज जो है सब्जी काट रहे हैं। फिर जब करेला आया हाथ में, तब महाराज ने पूछा, प्रभुपाद करेला कैसे काटना है? तो अभी तक प्रभुपाद जो है मसाज ले रहे ना, तो आंखें बंद है ऐसे ही बोल रहे, लेकिन जैसे ही करेला की बात आई ना, तो प्रभुपाद जी ने आँख खोला, उनकी तरफ स्माइल किया और बोला, हाँ करेला, हाँ करेला कैसे काटते, अच्छा तो करेला। तो भक्तिचार्य महाराज बोलते कि मुझे समझ में आ गया कि शायद उनको समझ में आ गया, बस हम दोनों को समझ में आ गया जो समझना था, शायद उनको पता चल गया। वो हंस रहे थे मेरे तरफ देखे, हाँ करेला इसको ऐसे काटते हैं। तो ऐसी इतनी सारी सुंदर सुंदर घटनाएं जो है प्रभुपाद जी के साथ उनकी घटी है। और एट द एंड जो है प्रभुपाद जी की जब समाधि देते हैं, तब भक्त चर महाराज खुद उस पिट में जब समाधि देते तो आपको जो वो होल बनाएंगे ना जिसमें शरीर को डालेंगे और फिर उसमें सॉल्ट और माटी डालते हैं, तो भक्त चर महाराज खुद थे उस पिट के अंदर में और जो है उनको बिठाया सही से, उनको जो कोपिन पहनाना था सब कपड़े पहनाया, फिर उन पे जो धीरे धीरे करके सॉल्ट माटी डालेंगे, तो जब डालना शुरू हुआ तो बाकी सबको ऊपर आ जाना चाहिए ना, आप वहाँ नहीं रह सकते। तो भक्तचार्य महाराज के मन में वो बोलते हैं अपनी किताब में कि मुझे उस मोमेंट में ऐसे लगा कि मैं ना यहाँ रह जाता हूँ, निकलूंगा ही नहीं, मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि बोल रहे कि मैं अभी बाहर निकल के क्या करूँगा। बोलते मैं तो प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम है उनकी सेवा करना, तो अब जब प्रभुपाद ही नहीं रहे तो मैं अभी रह के क्या करूँगा, मैं यहाँ समाधि में उनके साथ ही रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा। तो मेरे मन में ये सारे ख्याल चल रहे थे और मैं बाहर नहीं निकल रहा था उस पिट से, और तमल कृष्ण महाराज बिल्कुल समझ गए मेरे मन में क्या चल रहे हैं। उसने मुझे हाथ दिया, बोला बाहर निकलो, क्या कर रहे हो तुम, चलो बाहर निकलो, और एकदम मुझे ऊपर खींच लिया। और बोलते कि मत्स्य महाराज बोलते कि उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैं अब क्या करूँ, मेरा काम क्या है, मेरा काम ही था प्रभुपाद की सेवा करना, अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे लगा जैसे मेरे जीवन का अब कोई निर्देश, मैं अब कोई दिशा नहीं दिखाई देती है, मैं अब करूँ तो क्या करूँ। तो बोलते फिर मैं प्रभुपाद जी के कमरे में गया तो अभी भी सब चीज़ वहाँ ऐसी ही थी, प्रभुपाद जी की शाल, प्रभुपाद जी के बिस्तर पर उनकी शाल थी, और उनके शॉल में प्रभुपाद जी के शरीर की जो स्मेल आती है और उनकी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और बस मैं वहाँ ही बैठ के रो रहा था। और फिर मुझे तमल कृष्ण महाराज ने कहा कि चलो अभी हम चलेंगे मायापुर, और वहाँ पे जो है पुष्प समाधि के लिए जो फूल प्रभुपाद जी के शरीर पे जो फूल थे माला थी उसको हमें लेके जाना है, और थोड़े दिन यहाँ से वृंदावन से अगर तुम बाहर निकलोगे मायापुर जाओगे तो तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें घड़ी घड़ी ये एम्प्टी रूम्स और प्रभुपाद की याद, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमारे साथ मायापुर चलो। और फिर वो भक्तचारू महाराज को वहाँ से मायापुर लेके चले गए। तो इस तरह से बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियाँ है, मैं आधी भी कहानी आपको बता नहीं पाई हूँ, दो हम इतनी टाइम से मैं बात कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस किताब कृपा सिंधु में है, आप ज़रूर पढ़िए। ये कृपा सिंधु इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद है, और इसमें भक्तचारू महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर अपने भाव प्रकट किए हैं, बहुत सारी अद्भुत अद्भुत कहानियाँ बताई है जिसमें हमें उनकी गुरु भक्ति के बारे में पता चलता है, वे कितना प्रभुपाद से प्रेम करते थे। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि प्रभुपाद जी भक्तचारू महाराज को बोलते कि तुम गोपीनाथ बाजार जाओ और वहाँ से कविराज को लेके आओ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। अब वृंदावन में वो पहली बार आए थे भक्तचारू महाराज, उनको गोपीनाथ बाजार कहाँ है पता नहीं है, वो वृंदावन में भी कभी मंदिर से बाहर नहीं निकले थे क्योंकि उनकी सेवा थी प्रभुपाद जी की पर्सनल सेवा करना, फिर भी उन्होंने प्रभुपाद जी जो बोलते थे वो एज इट इज़ करते थे। वो रिक्शा लेते हैं, गोपीनाथ बाजार पहुँचते हैं, पूछते पूछते वो कविराज के पास पहुँच जाते हैं, जब एक्चुअली वो कविराज को देखते हैं तो पता चलता है वो तो बूढ़ा आदमी चेयर के ऊपर में बैठा हुआ है, मेज यहाँ पे लगा हुआ है, वो खुद ही 80 इयर्स के होंगे, और भक्तचारू महाराज उनको बोलते कि आप मेरे साथ आएंगे, हमारे गुरु प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, और कविराज बोलते कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं नहीं उठ सकता, आपके गुरु को यहाँ लेके आओ ट्रीटमेंट के लिए। और दो मिनट के बाद देखते हैं भक्तचारू महाराज गायब, कहाँ है वो, भक्तचारू महाराज उस कविराज के पैर के पास में बैठे हुए, उसके दोनों पैर पकड़े हुए, प्लीज़ आप आइए हमारे गुरु को ट्रीटमेंट के लिए। और फिर वो कविराज हंसते हैं, अच्छा ठीक है मेरे पैर तो छोड़ो, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, और फिर उसे रिक्शा में बिठा के प्रभुपाद जी के पास में ले जाते हैं और प्रभुपाद का ट्रीटमेंट करने के लिए। और वो कविराज जी प्रभुपाद जी को बताते भी है कि तुम्हारे शिष्य तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसी सुंदर सुंदर घटनाएं से हम देखते कि He was a perfect disciple, and a perfect disciple can be a perfect guru. अगर आप जानना चाहते हो एक perfect guru कौन है, जो perfect disciple है वो ही एक perfect guru बन सकता है। तो भक्तचारू महाराज एक perfect disciple, एक perfect guru, एक friend, एक well-wisher, एक इस्कॉन के अद्भुत leader, एक charismatic leader, एक front line के soldier, जो इस एज में at the age of 75 कौन जाएगा विदेश, सोचेगा अरे कोरोना वायरस ऐसी सिचुएशन में यहीं ठीक हूँ, मैं यहाँ से जूम क्लासेस दूंगा, मैं यहाँ से आपको एंकरेज करूँगा, लेकिन वे खुद गए वहाँ पे फाइट करने के लिए, कौन करेगा। सो मैं तो सोचती हूँ कि यहाँ पे इस किताब में भक्तचारू महाराज ने कहा कि प्रभुपाद है कृपा सिंधु, लेकिन प्रभुपाद की कृपा सिंधु के बिंदु है भक्तचारू महाराज, उनके इस कृपा के वे खुद एक कृपा के बिंदु है जिसके द्वारा हम प्रभुपाद की कृपा सिंधु का टेस्ट कर सकते हैं। उनकी सी प्रभुपाद का कृपा सिंधु तो हमें एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन भक्तचारू महाराज के द्वारा वो हमें अवेलेबल हुआ है। नॉट ओनली भक्तचारू महाराज सारे प्रभुपाद के शिष्य, वे हमारा जरिया है। प्रभुपाद जी की मर्सी, प्रभुपाद जी की दया और कृपा, उनके द्वारा हमारे जीवन में बहुत ही सरल भाव से उपलब्ध हो रही है। तो ये काफ़ी एक दुखद घटना है जो हमारे हमारे साथ हुआ है, जो हमें मैसेज मिला है, जो महाराज जी हमें छोड़ के चले गए हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जब रामानंद राय को पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख क्या है, सबसे ज़्यादा पेनफुल क्या है, तो रामानंद राय बोलते हैं कि एक भक्त का सेपरेशन सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, उससे ज़्यादा पेनफुल मैं नहीं जानता क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो हमारे सबके लिए काफ़ी पेनफुल है कि अब हम महाराज को मुखामुखी नहीं देख पाएंगे, शायद उनके मीठे मीठे भजन नहीं सुन पाएंगे, शायद उनकी प्यारी सी वाणी अब हमारे कान में नहीं गूंजेगी। लेकिन ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एटलीस्ट अब उनके क्लासेस, लेक्चर्स, उनके संदेश यूट्यूब में, सेल्स में, हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, डिज़ायर ट्री में, ऐसे अलग अलग फोरम में, उनके वेबसाइट्स में अवेलेबल है, जिसका अभी भी हम पान कर सकते हैं। और उनके शिष्य भी तो उनकी लेगेसी कैरी कर रहे हैं, हम उनका एसोसिएशन ले सकते हैं, उनमें हम महाराज के शायद और बोलना मुश्किल है। तो यही समाप्त करेंगे।
तब कथामृता ताप्त जीवना कवि भीरीता कल्मषा पाहा।